सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। आज हम अपने पुराने दोस्त आदिल नजम को फिर वेलकम कर रहे हैं। आदिल साहब, वेलकम एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अस टाइम।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
आदिल साहब को मैं इसलिए तकलीफ दे रहा हूँ क्योंकि आप सब ने सुना होगा, मेरा ख्याल पाकिस्तान में सबको ये बात ज़रूर पता चली होगी, महसूस हुई होगी, वट एवर, कि आदिल साहब ने कुछ अरसे से अपनी मुहिम चलाई हुई है कि हमने यूथ के साथ, माशाल्लाह ये भी यंग हैं पर ये यूथ के साथ बात करना चाह रहे हैं, अपने उम्र के लोगों के साथ। तो इन्होंने बात की भी है और इन्होंने एक अभी बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकाली है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये मेरे सामने पड़ी है, पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसका नाम है अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ अ यंग पाकिस्तान और इस पर बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, आई शुड से इनकी टीम ने, वो भी इनसे पूछेंगे। तो मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने काम नहीं, बहुत सारे, आदिल नजम वाज द लीडर ऑफ़ द टीम और माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी टीम थी, हम उस पर बात करेंगे। बट ये रिपोर्ट एक बहुत शानदार रिपोर्ट है और इस पर काफ़ी सारी बात भी हुई है मीडिया में भी, और आदिल साहब ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस की हैं, ऑपेड भी बड़े अच्छे निकले हैं, इसकी फाइंडिंग्स काफ़ी इंट्रीगिंग है। तो मैंने इनको आज कहा, मैंने कहा कि ये हमारी नौजवान कौम जो होपफुली इस पॉडकास्ट को सुनती है कि उससे भी ज़रा बात करें और हमें बताएं कि इन्होंने क्या सीखा है और क्या इस रिपोर्ट में किया है। तो आदिल साहब, पहले तो बताइए इस रिपोर्ट की कोई थोड़ी हमें हिस्ट्री, कोई जेनेसिस, कोई इसके अंदर जो आपने जो काम, थोड़ा सा पहले हमें लॉजिस्टिक्स और इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें समझा दें, फिर हम आगे इसमें इसके अंदर जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे फिर लिया है, हमेशा प्लेजर टू बी विद यू ऑन दिस। रिपोर्ट जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे है या इंसानी तरक्की, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं तो बड़ा फख्र करता हूँ उस पर, इसलिए कि एक तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में सही है कि इंसान की तरक्की देखी जाए, ना सिर्फ के मईशत की और अफराद की तरक्की देखी जाए, लेकिन दूसरा ये कि ये एक बहुत पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर महबूबुल हक ने एक तरह से इसका इजाद किया दूसरों के साथ, लेकिन क्लियरली ही वाज द लीडर और उन्होंने 1990 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
निकाली। बहुत अच्छी आपने बात की और हमें अपने ऐसे थॉट लीडर्स का ज़रूर हमें याद रखना चाहिए और उनका जिक्र करना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्टर महबूबुल हक का जिक्र किया, हमारे दिल में वो रहने चाहिए। जी
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक तरह से जो उसके बाद जो नोबेल अवार्ड अमर्त्या सेन को मिला, वो तब तक डॉक्टर साहब डॉक्टर महबूबुल हक की वफात हो गई थी, लेकिन क्लियरली वो जो अवार्ड था वो उस काम पर दिया गया था जो इस पूरी जनरेशन के लोगों ने उनका जिक्र भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि दुनिया भर में अब साल ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकलती है और बहुत सारे ममालिक एक नेशनल रिपोर्ट निकालते हैं। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ ज्यादा पेशरफ नहीं हुई। आज से तकरीबन 15 साल पहले एक रिपोर्ट पाकिस्तान नेशनल लेवल पे निकाली गई थी, डॉक्टर अकबर हुसैन ने उसको ली थी और उसके बाद एक दो कोशिशें हुई जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सामने नहीं आई। तो सोचा ये गया कि हमें पाकिस्तान पे एज अ ट्रिब्यूट टू डॉक्टर महबूबुल हक, लेकिन वैसे भी हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये हमें बेहतर पता है कि हम क्या क्या कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्या कंपेरिजन है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, और उस सूरत हाल के लिए जो हर रिपोर्ट का एक मौजू होता है तो वो हमारा ये ख्याल था कि यूथ से बेहतर, नौजवानों से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जो आपका मुल्क है वो एक नौजवान मुल्क है। आपकी तकरीबन 64% आबादी 30 साल या उससे कम है, जिसका मतलब ये पेरिफेरल ग्रुप नहीं है, दिस इज द सेंटर ऑफ द कंट्री। मसलन एक हम वहाँ रिपोर्ट में बात करते हैं कि अगर आप यूथ को एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी समझे तो फिर ये आपके सबसे बड़े सूबे से बड़ी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी। तो इसका ताल्लुक इसका सिर्फ एज अ स्लोगन या साइड कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, इसको सेंटर।
अदिल साहब, ये बताइए कि आपके साथ, अब आपके, अब आपने मुझे, मैंने आपको टीवी पे देखा था, आपने कहा था आपके साथ एक टीम थी, तो हमें ज़रा टीम की भी एक नौइयत बता दें, किस किस्म के लोग थे, कौन थे, यूथ में कितने थे, यूनिवर्सिटीज में कितने थे, कोई ताकि लोगों को हिसाब हो जाए कि इसमें पार्टिसिपेशन क्या थी।
जी बहुत मुझे फख्र है इस बात पे। तो हमारे, हम दो टीम लीडर थे आपके लिए, मैं और डॉक्टर फैसल बारी जो इकोनॉमिस्ट हैं लाहौर यूनिवर्सिटी।
बिल्कुल सही, फैसल बारी से मैंने शेड्यूल किया हुआ है, इस हफ्ते हम उनके साथ एक और भी करेंगे पॉडकास्ट पे। जी
तो हम दो टीम लीडर थे, उसके बाद हमने बहुत से एक्सपर्ट से भी बात की, लेकिन हमारी जो कोर टीम थी वो एक नौजवान टीम थी, उसमें مختلف نوجوان سٹیٹسٹکس، ہمارا انالیسز، ہماری رائٹنگ، ہم نے کوشش یہ کی کہ فار دا رپورٹ جو ہے وہ فار دا یوتھ ہو لیکن بائی دا یوتھ بھی ہو، اور لٹرلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لکھی بھی یہ نوجوانوں نے، ہم نے اس کو سپروائز کیا. لیکن جو بڑی بات ہے میرے خیال میں جو ہم نے کی اور وہ یہ کہ وی وینٹ آؤٹ ٹو لسن. سو ہم کئی دو تین سال سے ایک لسننگ ٹور پہ، اور ہمارے اندازے سے 130,000 لوگ جس کی واسٹ میجورٹی نوجوان ہیں، نوجوان سے مطلب 15 سے 29 سال، ان سے ہم نے وی ہیو ہرڈ فرام دیم.
یہ ذرا ایک سیکنڈ، یہ ذرا مجھے سمجھا دیں، میں سمجھا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں سے بات کی، تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیلی فون پہ بات کی، کیا کیا، کس طرح، اور 130,000 لوگوں سے کیسے بات کر لی آپ نے؟ یہ
بہت بڑا نمبر، اور اس میں اس کے مختلف، ہم نے اس میں مختلف طریقے سے ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ، خصوصاً ان نوجوانوں سے جن سے عموماً ہم نہیں بات کرتے، جو دور دراز علاقے میں ہیں، یا تعلیم کا مسئلہ یا دوسرا. تو اس کے کئی کئی پہلو تھے. ایک پہلو تو اس کا یہ کہ جو میرے خیال میں کور ہے، ہم نے ہماری جو میتھڈالوجی تھی وہ فوکس گروپس تھے. سو 81 فوکس گروپس ہم نے کیے.
81 فوکس گروپس، اچھا
81 فوکس گروپ، لینتھ اینڈ بریڈتھ، اور خصوصاً ڈپریسڈ ایریا. مثلا ہم نے پرزن کے اندر جا کے فوکس گروپ کیا، ہم نے بریکلن ورکرز کے ساتھ کیا، کول مائنرز کے ساتھ شانگلا میں کیا، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، غزر، گلگت، فاٹا کے نوجوانوں کے ساتھ، بلوچستان، کیونکہ ایک بڑا پروونس ہے، سو وی کائنڈ آف اوور ہیڈ ٹو اوپر ریپرزینٹ بلوچستان کیونکہ اس کی جیوگرافی اتنی بڑی.
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فوکس گروپس، یعنی کہ آپ نے کتنے 8-10 بچے بٹھا کے ان سے باقاعدہ بات کی، کیا کیا؟
جی، تو فوکس گروپ جو تھے وہ رینج کرتے تھے ایٹ دا لو لیول بائی 8، ایوریج آپ سمجھ لیں تقریباً 15، اور کچھ تھے جس میں 40-50 بھی.
اچھا،
سو اس سے تو 100,000 نہیں بنتے. سو ایک تو ہم نے یہ ڈیپ انگیجمنٹ کی فوکس گروپ سے، دوسرا ہم نے کیا ایک نیشنل سروے، بہت سائنٹیفکلی ٹو آر بیسٹ لیول وی ٹرائی ٹو ڈو اے سائنٹیفکلی ریپرزینٹیٹو نیشنل سروے، ملک اور ریجنز میں بانٹ کے. ڈسٹرکٹ لیول پہ ریپرزینٹیٹو نہیں تھا، لیکن سب ریجنل لیول پہ، سب پروونشل لیول پہ ریپرزینٹیٹو نیلسن کے ساتھ ہم نے کرایا، لینتھ اور بریڈ. سو سروے میں مثلا کوئی میرے خیال میں تقریباً 9,000 لوگ اور آ گئے. اس کے بعد ہم نے بہت سی ایسی، ہم نے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ہم نے کیمپین چلائی، دوسری کیمپین چلائی کہ جی ہمیں آپ آئیڈیاز بھیجیں، سو وی ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ. ریڈیو پہ ہم نے کیمپین چلائی، ہم نے اس میں ایک آرٹ کمپٹیشن کیا ٹو ڈو دس. مائی فیورٹ واز ہم نے بالکل ایک سمپل سا ایک گتے کا خوبصورت لیکن ایک ڈبا بنایا، اس کو مختلف جگہ پہ ہم نے بازاروں وغیرہ میں رکھ دیا، جس کے اندر ایک کیمرہ تھا، اور عام نوجوانوں سے ہم یہ کہتے تھے اس ڈبے کے اندر جاؤ اور جو کہنا ہے کہنا، سوال یہ ہے کہ تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے، لیکن جو کہنا. سو بچے بچے ہوتے ہیں، کچھ نے ذرا مذاق فضو کیا، لیکن بہت نے بہت سے آئیڈیا دیے. سو وی ہیو لٹرلی تھاؤزنڈز آف آورز آف دس ٹیپ. سو کوشش یہ تھی کہ جتنی زیادہ آئیڈیاز لے سکے، اور اس کے ایک جو نتیجہ نکلا، آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، تو رپورٹ میں ہم نے سائٹ پہ بجائے اس کے کہ میں اور فیصل بنائیں، جو ہم نے بنائی
جوان پاکستان،
ہاں جوان آئیڈیاز، ہم نے اس کنورسیشن سے 101
ہر صفحے پہ ہر صفحے پہ بالکل،
ہاں جس طرح سلامی ہوتی ہے، تو 101 آئیڈیاز جو حقیقتاً نوجوانوں سے آئے. اور آپ کو خوشی یہ ہوگی کہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ سمپل لگتے ہیں، لیکن دے آر آل میننگ فل،
ویری میننگ فل.
اور ان کو ہم نے پھر ایک تاش کے پتوں کی طرح، ہم نے رپورٹ تو چھاپی چھاپی لیکن یہ کارڈ چھاپے، لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ لیٹ اس لسن ٹو دیم. میں اگر آپ کو دو ایک ایگزامپلز دوں کہ وہ کس قسم کے آئیڈیاز ہیں جو عموماً پالیسی رپورٹس میں نہیں ہوتے. مثلاً یہ کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کو کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کسی اسکول میں جا کے بچوں کو ریڈ کریں، کوئی کتاب پڑھ کے سنیں. ناؤ دس ساؤنڈز لائک اے سمپل تھنگ، لیکن اٹ از آئیڈینٹیفائنگ اے ریئل نیڈ. لائبریریز کے بارے میں جو
آپ کو یاد ہوگا، اوباما کرتا تھا یہ، جارج بش بھی کر رہا تھا.
جب 9/11 کا خبر ملی ہے جارج بش کو، اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ ایک اسکول میں، ایک پرائمری اسکول میں بیٹھا بچوں کو ریڈ کر رہا،
بالکل کہانی سنا.
آپ کو اگر وہ تصویر یاد ہو تو ان کو آ کے بلایا گیا کہ جی کچھ ہوا ہے. سو کہنے کا سو اٹ از ون، بٹ لائبریریز کے بارے میں
اس نے سوچا کہ میں یہاں سے اٹھوں کہ نہ اٹھوں. پہلے اس نے کہا میں پڑھتا رہوں گا، پھر وہ اٹھا جب بہت پریشان ہو گیا، ورنہ وہ بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا.
बिल्कुल बिल्कुल, उसने पहले अपनी वो एनालिसिस किया कि कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहने का मकसद ये कि बहुत सारे ऐसे, मसलन अगर मैं एक और आपको दूं कि मैं लाइब्रेरीज का जो जिक्र करना चाहता था क्योंकि आपका पैशन है, अ नंबर ऑफ दीज वर कि लाइब्रेरीज को खोला कैसे जाए, कि लाइब्रेरी को कम्युनिटी, मसलन उसमें दो तीन ऐसे प्रपोजल्स हैं कि लाइब्रेरीज को आप बजाय किताब का जखीरा बनाने की उनको कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, उसमें आप खेल खेल और लाइब्रेरी को साथ कर,
बहुत अलग,
सो लॉट्स ऑफ दीज थिंग्स, कई बहुत सीरियस चीजें, कई बहुत सीरियस चीजें।
जो आपने कहा फोकस ग्रुप्स, बताइए एक चीज आप भूल तो नहीं गए, मदरसे के बच्चों से बातें की?
नदीम सच्ची बात यह है कि आई थिंक कम अज कम जो मैंने किए तकरीबन एक तिहाई में मैं खुद मौजूद था, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मेरी अपनी जिंदगी।
अच्छा, गली कूचे बच्चों के साथ बात की,
गली कूची
पढ़े लिखे बच्चे, गली कूचे जो जाहिर बच्चों के साथ बात की आपने?
बिल्कुल, ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ की। अच्छा। वो बच्चे जो जेलों में पल बढ़ रहे, ये सोचने वाली बात है कि देर आर चिल्ड्रन इज इन जेल्स, राइट, इसलिए कि माँ जो है वो जेल में है तो बच्चे को फिर उसके साथ ही रहना पड़ता है। देर आर ट्रांसजेंडर ग्रुप्स के साथ हमने किया, हमने डिप्रेस कम्युनिटीज के साथ किया, हमने एलीट के साथ किया। फोकस ग्रुप में हमारा रूल ये था कि हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो रहे थे, वो हमने रिप्रेजेंटेटिव साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन हमने ली सर्वे में। फोकस ग्रुप में वी वॉन्टेड टू रीच आउट टू मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, क्योंकि वो वॉइसेस थी जो हमें और हमारी टीम के लिए जो थी नई थी, वरना एक आपकी अपनी जो बायस है, देखिए हम अगर मैं आपसे पूछूं, आप मैं या कोई भी, हम लाहौर कराची जितने एक नौजवान की शक्ल तस्वीर बनाओ, आई बेट यू इस रिसर्च के बाद कि वो तस्वीर वो नहीं होगी जो पाकिस्तान का नौजवान,
माशाल्लाह,
हम एक मॉडर्न लुकिंग फोन उठाया हुआ,
हाँ हाँ, निकर पहनी हुई, कमीज पहनी हुई, वो बनाएंगे, है ना?
हाँ,
बिल्कुल ठीक है।
हम जो गरीब नौजवान भी बनाएंगे वो भी मॉडर्निटी के अंदर होगा, लेकिन आपका जो मुल्क है, जो हकायक सामने आते हैं, उसमें आपका एवरेज नौजवान अव्वल तो शहर में रहता ही, खैर अब रहता है, अब मेजोरिटी शहर में रहती है, लेकिन लेकिन वो जो है एवरेज नौजवान जो है वो, अगर आप लाहौर में गुलबर्ग में किसी बंगले में जाएं तो वो जो फोन पर ट्वीट कर रहा है वो नहीं है, एवरेज नौजवान वो है जो शायद उसके लिए चाय लेके आ रहा है और उस घर में काम कर रहा है।
वेरी गुड। अच्छा आदिल, मुझे बताएं, अब जरा रिपोर्ट पे आ जाए, मुझे इसमें जो आपके मोटे मोटे तीन चार बड़े मैसेजेस हैं वो बताइए, वो क्या है?
सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि तीन लेवर्स ऑफ चेंज हैं पॉलिसी के लिए, जिसको हम थ्री ईज कहते हैं,
ठीक,
कि बहुत सारी चीजें करनी है लेकिन तीन चीजें सबसे अहम है नौजवान के लिए भी, और लेवरेज करने को मेजर चेंज उनके जरिए से, और उसको हम तीन ईज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंगेजमेंट, लेकिन तीनों के साथ एक क्वालिफायर है कि तालीम, लेकिन मियारी तालीम। तालीम का मसला यकीनन ये है कि स्कूल में नहीं बच्चे, लेकिन इतना ही बड़ा मसला ये है कि स्कूल में जो तालीम हासिल हो रही है उससे उस बच्चे का ज्यादा फायदा नहीं होता, और उसका जो सबसे पहला पहलू नजर आता है वो फिर रोजगार में आता है कि बामकसद रोजगार, जिससे एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर आप ये सोचें ना कि हम जब किसी से पूछते हैं कि जो मोस्ट बेसिक सवाल जो किसी से पूछ सकते हैं उसमें से एक सवाल है कि तुम क्या करते हो, ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये सिर्फ एक, एक, एक पैसे लाने का वसीला नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वी फाउंड कि नौकरियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन डिग्निफाइड नौकरियां, वो नौकरियां जिसमें एक अपॉर्चुनिटी टू राइज हो, बेसिक हकूक हो, वो नहीं। और तीसरा जो है जिसको शमूलियत या हकीकी शमूलियत कहते हैं, और उससे हमारा मकसद ये है कि क्या नौजवान ये यकीन रखता है कि जो फैसले उसकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होंगे उन फैसलों में उसकी आवाज शामिल। ये तो इसमें आप कह लेना कि सियासत है, किसने वोट दिया कि नहीं, ये तो हम समझते हैं, लेकिन इन फैसलों में शादी का फैसला है, इस तरह फैसलों में तालीम का फैसला है, सेटल होने का फैसला है, मूव होने का फैसला है। सो शमूलियत जो है, मीनिंगफुल शमूलियत, ये तीन इसके लेवल। दूसरी एक जो है, हमने एक्चुअली यू नो पॉलिसी वाइज तो देर इज अ लॉट ऑफ آلریڈی لوگ سمجھتے ہیں کہ یقیناً نوجوان اہم ہیں, لیکن جو بڑا سوال ہے جو اس کے ان تین کے علاوہ جو تھا وہ یہ کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے آج سے لے کے تقریباً 2040-2045 تک, 2040 تک آپ کہہ لیں, پاکستان ایک ینگ کنٹری ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو یوتھ بلج ہے یہ ہمیں کیا ڈویڈنڈ دے گا یا یوتھ بام دے, اور یہ دونوں دے سکتا ہے ہمیں, یہ ایک گروتھ کا بہت بڑا محرک بن سکتا ہے, لیکن اف ناٹ کیئرڈ دین یہ مسائل کا باعث بن سکتا ہے.
یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے کہ ہم یوتھ ڈویڈنڈ پہ بیٹھ رہے ہیں یا یوتھ بام پہ بیٹھ رہے ہیں. ڈیموگرافک ڈویڈنڈ تو ہم کافی دیر سے کہہ رہے ہیں, بٹ کوائٹ فرینکلی اٹ وڈ بی کیا کہتے ہیں, اٹ کوڈ بی اے یوتھ بام اف یو ڈونٹ ٹریٹ اٹ ویل, اینڈ کوائٹ فرینکلی ہم نے ابھی تک کیا نہیں اس کو ٹھیک طرح.
میں ندیم اگر ایک ہلکی سی جو پہلا پیراگراف ہے رپورٹ کا, بڑا سوچ سمجھ کے کروٹیں لے کے رات کو ہم نے ڈالا. پہلا پیراگراف میں ہم کہانی سناتے ہیں ٹونیشیا کی, مہینہ دسمبر کا ایک نوجوان ہے, اس کے پاس نوکری نہیں ہے, تھوڑی سی تعلیم ہے, ٹھیلا لگاتا ہے, پولیس والا اس کو تنگ کرتا ہے, سیاست اس کو بری لگتی ہے, شادی اس کی نہیں ہو سک رہی, ایک پولیس والی آتی ہے اسے رشوت مانگتی ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں لاہور میں میٹر ہو جاتا ہے,
بالکل صحیح,
اس کا سر گھوم جاتا ہے, وہ پہلے اس کی پٹائی کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے,
بالکل صحیح.
تو ہم رپورٹ اس کہانی کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ کہانی پاکستان میں کہیں ہو سکتی
ہے,
اور اگر ہوگی تو کیا آپ سرپرائز ہوں گے. لیکن سوال اصلی یہ نہیں ہے کہ سرپرائز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کہانی کو پاکستان میں امیجن ہی نہ کر سکیں, اینڈ دیٹ از دا پرپز آف دا رپورٹ. ایک اور کہانی جو ہم نے اس میں نہیں لکھی کیونکہ میں نے وہ ریسنٹلی سنی, ہم آج کل سیریا کا بڑا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سیریا کا جو مسئلہ ہے آج کل والا, اس میں رشیا, امریکہ, سعودی عربیہ, بشار الاسد, ہم ساری یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ شروع کیسے ہوا؟ شروع ندیم ایسے ہوا کہ دو ینگ بچے تھے, ٹین ایجرز, انہوں نے عرب اسپرنگ جب شروع ہوئی تو ایک دیوار پہ گرافیٹی لکھی جس کی ترجمہ تقریباً یہ بنتا ہے یو آر نیکسٹ ڈاک. بشار الاسد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, اس پہ اس کو آپ سمجھ لیں گے, انہوں نے لکھا ہوا یو آر نیکسٹ ڈاک. ریپریسو اسٹیٹ ہے, انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا, ان کی تھوڑی سی کھچائی ہوگی, اس کے اوپر ایک موومنٹ شروع ہو گئی اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئی. یقیناً یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی وجہ سے شروع ہوئی, لیکن جو تیلی لگائی گئی, جو اسپارک آئی جس سے یہ پیدا ہوا, وہ یوتھ ڈسکنٹینمنٹ. سو مسئلہ جو بام کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آواز نہیں دیں گے, اگر آپ تعلیم آپ کی معیاری نہیں ہے, روزگار آپ کی بامقصد نہیں ہے اور شمولیت آپ کی حقیقی نہیں, تو پھر ایک لاوا جو ہے وہ اٹھے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ بچے جو ہیں, یہ نوجوان جو ہیں, بچے تو نہیں کہنا چاہیے, نوجوان جو ہیں وہ, ان کا غصہ نظر آئے گا, اور اس غصے کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو شاؤٹس ول بیکم ٹو ٹرن ٹو اسکریمز اینڈ اسکریمز ول ٹرن ٹو وائلنس.
دیکھیے, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور اس سے میرا پورا اتفاق ہے. آپ کو یاد ہے میں بھی پی آئی ڈیز کے زمانے سے اس پہ کام کر رہا ہوں, اور وہ گروتھ فریم ورک میں بھی یہی ڈالا تھا. مسئلہ صرف اس میں یہ ہے کہ ہم لکھ تو دیتے ہیں بٹ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور نہ اس پہ کوئی غور و فکر ہو رہا ہے. دیٹس وائی آپ کی رپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو رپورٹ میں جو آپ نے تھری ایز کی بات کی ہے, میں ان سے بالکل پوری اگریمنٹ میں ہوں, تائید کرتا ہوں, بٹ دا مین تھنگ از کہ یہ تھری ایز کو ہم اس بات کو آگے کیسے بڑھائیں. دیکھیں, ایجوکیشن پہ بہت بات ہو چکی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک پروگرام ہے الف اعلان, مشرف زیدی صاحب اس پہ لگے ہوئے ہیں, ڈفڈ میں کوئی 25 million pounds اس پہ خرچے ہیں اور بہت شور مچ رہا ہے پچھلے 5 سالوں سے, پر بات وہیں کی وہیں ہیں. وہ مائیکل بابر صاحب بھی یہاں آئے تھے, انہوں نے بھی ایجوکیشن پہ بڑی بات کی. ٹھیک ہے, کچھ پیش رفت ہوئی ہے پر یہ نہیں کہ کوئی ایجوکیشن پہ کام ٹھیک ہو گیا. چلیں پہلے ایجوکیشن کو لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز کی حالت, میں آج کل ایک ریسرچ کر رہا ہوں عادل, کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی کہ پاکستان کا ریسرچ سسٹم کیا ہے, تو آپ سے اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. پاکستان کے ریسرچ ایکو سسٹم پہ ایز اے سسٹم, آئی ایم ٹرائنگ ٹو لک اٹ ایز اے سسٹم ناٹ ایز ون انڈیویجول یونیورسٹی اور وٹ ایور. اب جو ریسرچ ایکو سسٹم ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز, بیسک لیول کو تو ابھی چھوڑ دیں فار اے منٹ, کہ پاکستان کی یونیورسٹیز, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل زیرو ہیں, कुछ काम हुआ है, ठीक है, ताऊरहमान साहब ने कुछ थोड़ा सा वो रिसर्च का क्या कहते हैं किस्म का झंडा बुलंद किया है, पर अभी ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई रिसर्च शुरू हो गई है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी अभी तक बहुत ऊपर नीचे है, और मेरा ख्याल है कि बेशतर यूनिवर्सिटीज़ वो ना इंटरनेशनल एवरेज से नीचे ही हैं, ऊपर नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अभी तक जो वाइस चांसलर लगाने के तरीके हैं बहुत पुराने तर्ज के तरीके हैं, कि अभी भी एक कमेटी बन जाती है, बाबर अली साहब उसके चेयरमैन बन जाते हैं, 10 साल से एक ही साहब चेयरमैन में हैं, ठीक है, जितने मर्जी रिस्पेक्टेबल हो, आई डोंट वांट वन गाय टू चेयर ऑल कमिटीज़ फॉर फॉरएवर, ठीक है जी। उसके साथ चार बंदे बैठ जाते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं 100-100, 200-200 बंदों को, दो मिनट के लिए, फिर वाइस चांसलर लगा देते हैं, फिर बात कोर्ट में चली जाती है, फिर कोर्ट उनको हटाता है, फिर कोर्ट में बात आ जाती है। खुदारा, हम तो यूनिवर्सिटी का निज़ाम नहीं चला सकते, तो ई कहां से आएगी?
हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं एजुकेशन पे आना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें, जहां आपने शुरू की थी बात, मैं आई वांट टू पिक दैट अप कि हम रिपोर्ट लिख देते हैं, उसका बनता है। ये आपकी और मेरी पहले भी बात हुई है, हमारा इन अ वे दोज़ ऑफ अस, आप, मैं, दूसरे जिनका काम ये है, तो ऐसा नहीं है कि वी वांट टू राइट रिपोर्ट्स जो गर्व कलेक्ट करें, हमारे लिए यू नो दिस इज अ वेरी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन,
नो नो वी हैव टू राइट, वो करना तो जरूरी है।
जो अच्छा आइडिया आता है तो बता कहता है यार ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ या पहले भी पढ़ चुका हूँ। अच्छा, उस लिहाज से मेरे ख्याल में जो मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी है और सरप्राइज है, आई वाज सरप्राइज्ड, वो ये है कि आई हैव बीन डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स मुख्तलिफ टॉपिक पे, क्लाइमेट पे,
बिल्कुल मुझे पता
है, लेकिन आई वाज सरप्राइज्ड नदीम बाय द रिसेप्शन दिस रिपोर्ट हैज गॉट।
आई नो बिल्कुल सही।
अच्छा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, सच्ची बात ये, हम लेट थे, तो मैं तो सोच रहा था कि डांट शांट पड़ेगी यार, क्योंकि हमें पिछले साल ये रिपोर्ट निकाल ली थी, सो यू नो इतराफ करना चाहिए, लेकिन आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई थॉट के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल आती है, एजुकेशन पे भी आती है, एम्प्लॉयमेंट पे आती है, सो वाई इज इट के जैसे आपने कहा तकरीबन हर बड़े अखबार ने, उर्दू के, अंग्रेजी ने इस पे इदारिया लिखा है, मोस्ट ऑफ दोज इदारिया जो है थॉटफुल है, इंडिपेंडेंट ऑपेड्स मैंने या फैसल बारी ने तो लिखा ही लिखा है, लेकिन दूसरे लोगों ने और नॉर्मल अपनी कॉन्वर्सेशन में दे हैव पिक्ड अप समथिंग फ्रॉम द रिपोर्ट एंड प्लग्ड इट इन। तो आई हैव बीन वंडरिंग, अच्छा, सोशल मीडिया पे नौजवान खुद सडनली, आई वॉज वेरी सरप्राइज के क्यों है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्यों है, क्योंकि इसमें शायद कोई लेसन हो, कुछ तो ये है कि शायद हमने ढिंडोरा पीटा और शायद वी वर बेड स्लाइटली सोच के हमने कि इसको कैसे हम डिसेमिनेट करें, लेकिन ये खाली कंपनी की मशहूरी की बात नहीं,
नहीं।
मेरे ख्याल में एक तो ये कि टॉपिक रेलेवेंट,
बिल्कुल सही,
राइट टॉपिक एट द राइट टाइम। आप इस वक्त पाकिस्तान को आसपास देखें, टीवी खोल के देखें, ये यूथ का जो मसला है दिस इज इन योर फेस,
बिल्कुल सही।
दूसरा मेरे ख्याल में सच्ची बात यह है कि जो हमने एफर्ट किया था लिसनिंग टू द यंग पीपल, दैट मेंट के इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रेजेंट भी थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से हुई और थी भी थोड़ी मुख्तलिफ, सो देर वॉज अ सर्टन फ्रेशनेस जिसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, जिसका क्रेडिट आई थिंक वो टॉपिक और वो इश्यूज थे।
वेरी गुड।
और तीसरा ये कि आई थिंक इसमें कुछ मैंने सीखा कि क्योंकि वी लेट द यंग पीपल राइट इट, तो उसकी जबान, उसके उसकी कंस्ट्रक्शन वॉज मच मोर यूजर फ्रेंडली देन जो अमूमन मेरे जैसे लोग करते थे,
ना तो उन्होंने अपने अपनी जबान में लिखा जो उनके लोग समझ सकते
हैं जबान में, और कई यू नो फैसल से और मुझसे तो बहुत ज्यादा बहस करते थे कि यू नो देयर आर मेनी थिंग्स वेयर आई वुड हैव गॉन दूसरे डायरेक्शन।
वो हम सब जानते हैं, हम अपने बच्चों का म्यूजिक समझ नहीं सकते, तो बेहतर है उनको अपने म्यूजिक को खुद ही बजाने दो और समझ दे दो, ठीक है ना।
सो कहने का मकसद ये कि मेरा इसमें जो लेसन है पार्टली पर्सनली वो ये है कि खाली रिसर्च अच्छी होनी जो है वो काफी नहीं है, वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं।
नहीं नहीं बिल्कुल सही।
और सफिशिएंसी के लिए वी हैव टू थिंक ऑफ इट, खुसूसन आज के दौर में, इन प्रेजेंटिंग इट इन अ वे कि उसकी अपटेक हो जाए। और सच्ची बात ये, कई इदारियों में उन्होंने वो वाले पॉइंट उठाए जो शायद मैं, मेरी नजर में इतने अहम नहीं थे, लेकिन हमारे लिए और मेरे ख्याल में, मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, द ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च, पहला तो ये ना कि रिसर्च अच्छी हो, फिर ये कि ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू अ पब्लिक कॉन्वर्सेशन, वो मैंने सीखा कि यार ये एक अलग आर्ट है, ये एक अलग फन है, और ये उतना ही जरूरी है जितनी अच्छी रिसर्च। एजुकेशन पे आपने बात की, एजुकेशन आई टोटली एग्री, एजुकेशन में इनफैक्ट आर फाइंडिंग्स आर द लीस्ट सरप्राइज, क्योंकि जैसे आपने कहा देयर इज सो मच गुड वर्क, और वो अमूमन नंबर भी है, आई थिंक आर कॉन्ट्रीब्यूशन इज मोस्टली के अगर क्वालिटी पे फोकस नहीं करोगे तो क्वांटिटी से कुछ नहीं बनेगा. और इसमें दोनों के मसाइल हैं. मैं अगर आपको दो छोटे छोटे नंबर दूं, एक हमने उसमें एनालिसिस किया, अमूमन बात होती है कि कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं. सो आई आस्क्ड माय टीम कि यार इसको लेट्स पुट इट ऑन इट हेड, डोंट टेल मी कि बच्चे स्कूल से बाहर कितने, टेल मी दिस कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है 25A के हर स्कूल जाने वाले बच्चा को स्कूल में होना चाहिए. अगर हमने ये पूरी करनी है और इसी रेट पे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बाय व्हाट ईयर विल एवरी चाइल्ड ऑफ स्कूल गोइंग एज बी इन स्कूल, अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे, जो अच्छी है एक्चुअली. उन्होंने कहा कि 2076 तो नदीम 2076 का मतलब ये है कि जितना अरसा पाकिस्तान को बने हुए हुआ है तकरीबन उतना ही और चाहिए टू गेट एवरीवन इन स्कूल. मैंने उनसे कहा यार वापस जाओ, ये गिव मी अ नंबर जो मेरी जिंदगी में हो सके. आई वांट टू सी दिस हैपन. मैं तो नहीं जितना 2076. सो व्हाट विल वी हैव टू डू. उन्होंने कहा कि इसको अगर आप 50% इंक्रीज कर देते रेट ऑफ एनरोलमेंट ग्रोथ तो फिर इट कैन बी 2050. मैंने कहा यार 2050 भी मैं जिंदा नहीं हूंगा, मेरी सेहत देखो. दे सेड इफ यू वांट 2030 तो चार गुना हमें एनरोलमेंट इंक्रीज करना है. ये तो नंबर्स वाला मसला था, लेकिन जो असली मसला है वो क्वालिटी का है. कि पहले तो अगर 100 बच्चा स्कूल में घुसता है पहली जमात में तो उसमें से तकरीबन 32 जो है वो 10वीं जमात तक पहुंचेगा. तो पहले तो आपका ड्रॉप आउट ही है. आपने एजुकेशन की यूनिवर्सिटी की बात की, मेरी भी जिंदगी यूनिवर्सिटी में गुजरी है, लेकिन द नंबर दैट थ्रू मी टोटली ऑफ वॉज कि 100 नौजवानों में सिर्फ 6 ऐसे होंगे जो 12 या 12 साल से ज्यादा की तालीम हासिल करें. राइट. अच्छा, एक तो ये एक्सेस का मसला ना, लेकिन दूसरा ये है कि आप जितना बड़ी मुल्क हो अगर 6% 12th तक पहुंचता है तो जो आपका पूल है जिससे आपने यूनिवर्सिटी बनानी है वो इतना श्रिंक हो गया. तो मेरा तो अब यकीन ये है कि हमारे पास यूनिवर्सिटियां जरूरत से ज्यादा है. वी डू नॉट हैव द स्ट्रीम ऑफ पीपल कमिंग इन आइदर फैकल्टी या स्टूडेंट जो उसको कैटर कर सके. सो एजुकेशन में द इश्यू वाज रियली क्वालिटी.
देखिए ना, क्वालिटी से मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कर लूं, क्या क्वालिटी है या मैनेजमेंट है? क्योंकि देखिए हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी जो है वो सड़क की तरह. अब एहसन इकबाल साहब, खुदा उनको सेहत दे, वो अपना उनको गोली लग गई है, अच्छे आदमी है, पर वो कहते फिरते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए. मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बना के. अब ये जो है ना कि यूनिवर्सिटी बनाते हैं पॉलिटिकल एंड्स के लिए, ये नहीं सोचते कि बच्चों को तालीम भी देनी है. हाँ, बिल्डिंग बना ली हमने, माशाल्लाह उसमें से ठेके मिल गए, पैसे मिल गए, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगता नहीं है, वो रद्दी है, या लगता है तो फिर झगड़ा हो जाता है, या लगता है तो फिर ऐसे मैंने आपको बताया बाबू अली साहब कमेटी बिठा के लगा देते हैं, एक मिनट के इंटरव्यू पर वाइस चांसलर लग जाता है. आप मुझे बताया, माशाल्लाह डीन है आप, एक मिनट के इंटरव्यू पर किसी को अपॉइंट करते हैं कभी?
मैं आपकी बिल्कुल बात से इत्तफाक करता हूँ. मेरा कहना यह है कि मसला पाकिस्तान का ये नहीं है कि डिग्री हो तो नौकरी नहीं मिलती, मसला ये है कि डिग्री हो तो तालीम नहीं मिलती. या ये यकीन नहीं किया जा सकता कि इसके पास डिग्री है इसलिए ये तालीम है. एम्प्लॉयर, हर एम्प्लॉयर होता है. आपके पास अगर मेरा बस चले तो रादर देन कि मैं यूनिवर्सिटीज, अगर मेरे पास चॉइस हो कि या मैं यूनिवर्सिटीज की तादाद डबल कर दूँ या मैं आधी यूनिवर्सिटीज को की क्वालिटी डबल कर दू, यूनिवर्सिटीज को आधा कर दू उनकी क्वालिटी डबल कर दू, आई वुड इमीडिएटली टेक द सेकंड. आई, मेरे दोस्त हैं, मैं इज्जत करता हूं लोगों की, लेकिन मेरा यकीन है, आई डोंट थिंक कि आपके मुल्क में इस वक्त जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उतने आपके पास क्वालिफाइड वाइस चांसलर
और क्वालिफाइड प्रोफेसर भी नहीं है. मेरा ख्याल क्वालिफाइड प्रोफेसर भी नहीं है
उनको फिल करने के लिए, प्रोफेसर नहीं.
मैं तो कहता हूँ आदिल के मेरे, मैं आप भी जानते हैं माशाल्लाह पाकिस्तान के सोशल साइंटिस्ट को, मैं भी जानता हूँ, मेरा कसम खुदा की मेरे, मुझे लगता है, एंड आई एम विलिंग टू बेट ऑन इट, कि हम एक कॉम्पिटेंट सोशल साइंस की फैकल्टी एक यूनिवर्सिटी में नहीं भर सकते पाकिस्तान में.
आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. और इसमें ये डबल वैमी है, डबल. मैं आई होप पीपल डोंट टेक दिस रॉन्गली, क्योंकि मेरी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो लोग काम करते हैं वो अच्छा करते हैं, लेकिन इसकी डबल वैमी है. एक तो ये है कि जब आप थोक के हिसाब से भरते हैं और लेस देन क्वालिफाइड एकेडमिक एक नॉलेज इकोनॉमी में लाते हैं तो उसका असर सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी पर नहीं होता. जो लोग अच्छे हैं उनकी स्पेस टू डू गुड वर्क श्रिंक हो जाती है. राइट, जो जो लोग अच्छे रिसर्चर हैं और हैं बहुत
हैं हैं बिल्कुल हैं, बट
जो अच्छे हैं उनको एक इकोसिस्टम चाहिए। अब अगर उनके इर्द गिर्द आप वो लोग जमा कर देंगे जो नो मैटर हाउ वेल मीनिंग उस इकोसिस्टम के लिए तैयार नहीं है, उस रिसर्च के लिए तैयार नहीं है। रिसर्च कैसे होती है, खाली ये पर्चा थोड़ी लिखते हैं, आप कोई बात करते हैं, दोपहर को आप एक सेमिनार देते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप कहते हैं हाँ यार इसने ये बात की है, मुझे शायद इसको ठीक करना चाहिए, या मैं आपकी बात सुनता हूँ, आपकी बात से मैं कहता हूँ यार इसका ये जो सवाल था ना ये मेरे सवाल से इस तरह रिलेटेड।
बिल्कुल।
सो ये जो नॉलेज क्रिएशन है ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। तो जब आपके पास उस इकोसिस्टम में इफ देर आर नॉट कॉम्पिटेंट पीपल, तो जो लोग अच्छे हैं और मेरे ख्याल में हर फील्ड में है ऐसे, वो सफोकेट होना शुरू हो जाते हैं।
अब देखिए मुझे बताइए एक और चीज कि अगर हम यूनिवर्सिटीज नहीं चला सकते तो हम अगर हम नीचे स्कूल चले जाएं तो वहाँ तो और भी बुरी हालत है, तो अगर हम सिर्फ ये गिन रहे हैं कि हमने बच्चों को स्कूल भेजना है और भेज के फिर मुझे एक दफ़ा एक मेरे ड्राइवर ने कहा था एक दफ़ा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपको पढ़ा लिखा ड्राइवर मिले, मैं आपको पढ़ा लिखा ड्राइवर नहीं देना चाहता, अपने रोड साइंस खुद पढ़े। मैंने उससे पूछा भाई ये आप क्या कह रहे हो, तो कहता भाई अगर मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है तो उस स्कूल में भेजें जहां आपका बच्चा जा रहा है ताकि उसको चांस हो कि वो भी बैंक ऑफ अमेरिका बोस्टन यूनिवर्सिटी जा सके। अगर आपने उसको उधर भेजना है जहां के वो सिर्फ फिर आपका ड्राइवर लग सकता है तो फिर मुझे क्या फ़ायदा उसको भेजने का। तो मसला ये है कि अगर ये हालत है तो फिर हम बच्चों को कैसे कहें कि वो
बिल्कुल एग्जैक्टली दिस वॉज जो आपने भी बात की है, हम भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे जब हमने लोगों से बात की कि और आप ये देखें कि आप जो अगर देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल हम समझते हैं कि बड़े बड़े होते हैं, वुमन प्राइवेट स्कूल तो बहुत पसमानदा इलाकों में भी होते हैं, लेकिन अगर टीचर माठा भी हो तो उनकी इंसिस्टेंस होती है कि जिसे अंग्रेजी पढ़ाओ, कि उन्हें समझ आ गई है कि ये कुछ गुर है जो आपकी मेरी क्लास ने समझ ली है, जिससे हमने एक परपेचुअल डिवाइड बनाई दी है। लेकिन जो हमने बड़ा लेसन इससे सीखा वो ये है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है और वी नीड एम्प्लॉयबल यंग पीपल। और एम्प्लॉयबल खाली ये नहीं कि उनके पास कोई नौकरी हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वही वही ड्राइवर बने, लेकिन उनकी एक जिसको मैं डिग्निटी और अपवर्ड मोबिलिटी की बात कर रहा था। तो हमारा नंबर ये आता है इस रिपोर्ट में कि आपको आज से लेके 2040 तकरीबन तक 1.2 टू 1.5 मिलियन न्यू जॉब्स हर साल चाहिए, नई जॉब जो इस वक्त मौजूद ना। अच्छा ये नंबर डिपेंड करता है कि आप यू नो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या अजम्पशन करते हैं वगैरह, लेकिन आप समझ लीजिए मिलियन से ज्यादा आपको चाहिए।
मेरा तो एस्टिमेट था 2 मिलियन से ज्यादा चाहिए।
फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे तो वो, बट द इंपॉर्टेंट थिंग वी फाइंड इज के, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं आप भी जानते हैं, अली चीमा वाज हेल्प अस अ लॉट ऑन दिस part of the research.
हाँ, उसने भी दो पॉडकास्ट हमारे साथ किए हुए हैं। बिल्कुल।
हाँ, wonderful, wonderful person. और उससे बड़ा कुछ सीखा हमने।
बिल्कुल।
लेकिन जो important चीज थी वो ये कि ये jobs बनाना मुश्किल नहीं, jobs बना लेंगे। हम अभी भी depending of आप कैसे काउंट करते हैं कोई आधा 5 लाख से 7 लाख जॉब साल की अभी भी बन जाती है, लेकिन मसला ये है कि वो जॉब क्या है, इज इट अ क्वालिटी जॉब। तो आप जो जॉब्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो बैड जॉब्स इस तरह है कि दे आर कैजुअल, दे आर नॉट परमानेंट, उसमें बेसिक वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं है, वो आप किसी के घर जाके कुक बन जाते हैं, वो आपका शनाख्ती कार्ड रख लेता है। लोग ये जो पक्की जॉब के पीछे भागते हैं गवर्नमेंट वाली, इवन अगर तनख्वाह कम हो, वो इसलिए नहीं भागते कि वो बेवकूफ है, वो इसलिए भागते हैं कि वो बहुत अकलमंद है, बिकॉज दोज आर गुड जॉब्स, दोज जॉब्स हैव सिक्योरिटी। और सो हमें अगर मिलियन वैसे जॉब चाहिए तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गवर्नमेंट के खजाने से तो नहीं बनेंगे, वो पीआईए में तो आप नई नौकरियां नहीं भरते जाएंगे हर साल 1 मिलियन नया बंदा। सो यू विल हैव टू क्रिएट, जो एक मौजू आप जानते हैं बहुत बेहतर से, कि एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर वेयर एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिंग गुड जॉब्स फॉर अदर पीपल। और वहां जो एजुकेशन का लिंक आता है वो ही आता है कि हमने जब एम्प्लॉयर से बात की अक्रॉस द बोर्ड टॉप मिडिल बॉटम हर एक कहता है यार बंदा नहीं मिलता। सवाल ये नहीं है कि नौकरी नहीं है, सवाल ये है कि बंदा नहीं है। बंदे से बात करें कहते हैं कि मेरे पास डिग्री है लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं देता। लेकिन जो डिस्कनेक्ट कोई बात नहीं करता वो इसलिए वो ये है कि डिग्री जो है वो क्वालिफिकेशन नहीं दे रही जो एम्प्लॉयर को चाहिए।
کوالٹی نہیں ہے بیسکلی,
جو کوالٹی نہیں,
ٹھیک ہے.
سو جاب میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی ہمارا, میرا جو سب سے بڑا فائنڈنگ ہے پالیسی وائز, ایجوکیشن پہ میں نے کافی کام کیا اور وہی باتیں جو ہر ایک کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں, لیکن جو نئی بات میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں امپلائمنٹ مائٹ بی اے لیور جو پالیسی چینج کر سکتے ہیں. اور وہ اس طرح کی ہماری ایک اس میں ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ابھی بھی کرتے ہیں پی سی ون میں, آپ پلاننگ کمیشن آپ نے لیڈ کیا کہ ایک نمبر ہوتا ہے کہ یہ جابس کتنی بنائیں گے. سو آر ریکویسٹ ہیز بین ٹو پالیٹیشنز, اینڈ ایکچولی یہ سینٹ پہ بھی اس دن ہماری رپورٹ ڈسکس کی گئی, آئی واز ویری ہیپی سینٹ کی فلور پہ, لیکن آر ریکمنڈیشن ٹو دیم از کہ آپ امپلائمنٹ نمبر کو سینٹرل نمبر بنا دیں ان پلاننگ along with cost. جس طرح دیکھیں کوئی پروجیکٹ انہوں نے کہتا ہے اتنے کا پروجیکٹ, یہ جو میٹرو ہے یہ اتنے بلین کی ہے, یہ سڑک جو ہے یہ اتنے ٹریلین کی ہے, اسی لیول پہ پٹ دی نمبر آف امپلائمنٹ. جیسے بہت سی دنیا میں کہ ہر جرنلسٹ یہ پوچھے, ہر سیاستدان یہ بتائے, ہر پلانر یہ تصدیق کرے کہ اس پروجیکٹ سے اتنی جابس کریٹ ہوگی, رائٹ. ہم نے سیپک کی فار ایگزامپل بات کرتے ہیں, ہم سیپک کی ہر قسم کی چیز کی بات کرتے ہیں, لیکن لک ایٹ ہاؤ انفریکوینٹلی وی مینشن کہ جابس کتنی کریٹ ہوگی.
نہیں, جاب سے ہمارا فوکس ہی نہیں ہے, ہمارا فوکس بلکہ گروتھ پہ بھی نہیں ہے. ہمارا فوکس, میرا خیال ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ہمارا فوکس صرف اس چیز پہ کہ ہم پیسے خرچیں گے کتنے اور پروجیکٹس بنائیں گے کتنے.
بالکل.
اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ پروجیکٹس جب بن جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان ٹرمز آف آؤٹ کمس, کہ نوکریاں یا گروتھ یا پروڈکشن یا ایسی چیزوں پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ. اس پہ یوتھ کیا کہتے ہیں؟
یوتھ پہ بات ہو, جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے. اگین یو نو دس بیٹر, ایک رینٹیئر اکانومی میں جو ہم ہیں, آپ ایکسپینڈیچر کی بات کریں گے نا, کیونکہ وہ امیڈیٹلی آپ اس کو کل کر سکتے ہیں, آپ اکوائر کر سکتے ہیں اپنے کے لیے. سو دا فوکس ان رینٹیئر اکانومی آئی تھنک امیڈیٹلی بیکمز آن ایکسپینڈیچر اینڈ ناٹ آن گروتھ, ناٹ آن امپلائمنٹ, جو دونوں لانگ ٹرم. جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تو میں آج اس کا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں نا, اگر آپ نے آج سڑک بنانی ہے تو میں آج ٹھیکہ لے سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے گروتھ کی بات کرنی ہے یا آپ نے امپلائمنٹ کی بات کرنی ہے تو پھر مجھے 5-10 سال کا فریم ورک کرنا پڑے گا, اینڈ دیٹ از ویئر وی فیل. بٹ یہ جو یوتھ والی بات ہے, پیپل, یوتھ انڈرسٹینڈ جابس, کیونکہ ہم نے اس میں جب سروے میں پوچھا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ, آنسر از ویری انٹرسٹنگ. تین چار چیزیں تھیں, نوکری خصوصاً مردوں کے لیے لیکن عورتوں کے لیے بھی, شادی وچ میکس فل سینس, گاڑی اور اپنا گھر. ان اے وے یہ بڑا ریشنل ریسپانس, اس میں کوئی ہائی فلیوٹنگ چیزیں نہیں ہیں, اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ گڈ جاب کا مطلب کیا. موبیلٹی فار ایگزامپل, ہم نے جو خصوصاً جب عورتوں کی روزگار کے بارے میں دیکھا, اور یہ بھی ہم نے علی چیما سے سیکھا, دا سنگل بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین میک آر ان موبلٹی اور دوسرا ہائیجین. آپ مجھے ایک جگہ دکھائیں جہاں بچیاں کام کرتی ہیں, شو می اینی پلیس جس میں سگنیفیکینٹ نمبر آف ویمن ورک, اینڈ آئی ول شو یو اے پلیس جس کا ایک باتھ روم صاف ہوگا اور دوسرا یہ کہ کسی قسم کی پک اینڈ ڈراپ سروس ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیر آر دی اسٹرکچرل تھنگس جو ہم حل کر سکتے ہیں. آج کل تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے بھی اس میں کافی پش کیا, اینڈ اٹ ہیز کاٹ آن, ناٹ جسٹ بیکاز آف اس, بٹ ویسے یہ جو ویمن موبیلٹی اور ویمن آن ویلز والی بات ہے, آئی تھنک تھنگز لائک دیٹ. آپ نے یہ جو اگر دیکھے نا, یہ جو میک ڈونلڈز نے کیا یا اس کے بعد سب وے جب آیا تو انہوں نے بچیوں کو امپلائی کرنا شروع کر دیا آن سروس جابس, اینڈ یہ میری فائنڈنگ وہاں ہوئی. آپ ان میں سے کسی جگہ چلے جائیں اینڈ آپ ان بچیوں سے پوچھیں, اگر ریسرچ کریں تو دے ول ٹیل یو کہ جی ایک ہمارے چینجنگ روم ملا اور ایک ہمارے پاس ریلائبل کسی قسم کی موبیلٹی پک اینڈ ڈراپ تھی. سو نمبر آف ویمن جو ورنہ ورک فورس میں نہیں تھیں وہ آنا شروع ہو.
اچھا مجھے بتائیے, اب ہم نے دو چیزوں کی تو بات کی, ایجوکیشن اور امپلائمنٹ, ذرا مجھے انگیجمنٹ کا بتائیے کہ انگیجمنٹ کیسے یوتھ کے ساتھ کریں. یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. دیکھیے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ کی تعداد کوئی مطلب تقریباً 150 million لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تقریباً 15 crore یوتھ ہیں. اب ان کے ساتھ ہم کیسے انگیج کریں, تو بہت بڑا ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں بڑی ہیٹروجنس کراؤڈ ہے کہ جناب یہ غریب سے لے کے امیر سے لے کے خضدر سے لے کے وہ اپنا خنجراب تک ہیں, تو کیسے انگیج کریں ہم؟
नदीम, पहली चीज हमने ये सीखी कि हमने नहीं एंगेज करना, ये खुद ही एंगेज कर रहे हैं।
ओके,
आप अगर नहीं करेंगे तो ये खाली चुप नहीं बैठे रहेंगे कि हमारे इंतजार में, और ये हम देख रहे हैं। आप अगर ये सियासी जलसों को देखें, आप इस वक्त की सियासत को देखें, इन सम वेज द यूथ इज डिफाइनिंग इट बाय लैक ऑफ आर एंगेजमेंट। उन्होंने उसकी शक्ल बदल दी है, उसका साउंड ट्रैक बदल दिया है, उसका फेस ट्रैक बदल दिया है। तो एक तो ये है। दूसरा जो ये दिस वॉज द मोर इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आर फ्रेंड एंगेजमेंट। तो पहले तो हमने सवाल ये पूछा कि यार व्हाट डज इट मीन टू बी यंग इन पाकिस्तान, और उसमें अनफॉर्चुनेटली काफी तश्वीशनाक हमें शक्ल मिली। वो ये कि वी आर रॉबिंग फ्रॉम आर यंग द एबिलिटी टू बी यंग, कि जो नौजवान होने की स्पेस है नौजवान के पास वो बहुत ही मुख्तसर है, और अगर आप फीमेल हैं और यंग हैं तो वो ना होने के बराबर है। इससे मेरा मुराद क्या है, अगर 100 नौजवान हो 15 से 29 साल पाकिस्तानी और बिल्कुल रिप्रेजेंटेड, तो सिर्फ 6 ऐसे होंगे उसमें से जिन्होंने जिनके पास लाइब्रेरी का एक्सेस होगा। 6, और एक्सेस का मतलब ये नहीं कि उन्होंने लाइब्रेरी इस्तेमाल की, लेकिन सिर्फ ये कि उनके पास एबिलिटी होगी टू यूज द लाइब्रेरी। सिर्फ 7 ऐसे होंगे जिनके पास किसी किस्म का स्पोर्ट्स ग्राउंड का एक्सेस होगा। सिर्फ 3 ऐसे होंगे जिन्होंने कभी सिनेमा देखा होगा। उसमें से जो है एक के पास गाड़ी हो 100 में से, उसमें से 10 के पास मोटरसाइकिल होगी 100 में से, 12 के पास मोटरसाइकिल होगी, 10 के पास साइकिल होगी, बाकी के पास कोई मोबिलिटी नहीं। उसमें से मेजॉरिटी ने कहेंगे कि हमारी जिंदगी में कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं।
माशाल्लाह।
कहने का मकसद यह है कि जब आप और मैं सोचते हैं कि जवान होने का मतलब क्या, तो यार एक जवान नौजवान को कश्मीर का मसला और फलस्तीन का मसला और अमरीका का मसले पर तो हर वक्त नहीं सोचना चाहिए।
पर आदिल साहब, आप मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी जाति कर रहे हैं। मैंने अगले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो मैं कुछ ये ऐसे ही लेक्चर दे रहा था बच्चों को अपने दिल लगी के लिए थोड़ा बहुत, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। मैंने उनसे कहा कि भाई आप गोल्फ खेलते हैं? सब बच्चों ने कहा नहीं खेलते। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा पोलो खेलते हैं? सब बच्चों ने कहा हम नहीं खेलते। तो मैंने कहा फिर हम जो लाहौर शहर में पोलो ग्राउंड और गोल्फ कोर्स बनाई जा रहे हैं, सारे शहरों में अब गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड बनाई जा रहे हैं। मैं तो सोचा था सारे बच्चे गोल्फ और पोलो खेलते, तो ये आपने इनसे नहीं पूछा है गोल्फ और पोलो क्यों नहीं खेलते?
बिल्कुल सही, केक केक खाते हैं कि नहीं खाते?
मेरा मतलब अब हमारा निजाम भी तो समझे ना, हम तो गोल्फ और पोलो लोग बच्चों को चाहते खेले।
बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नदीम मसला ये ना कि वो तो बना रहे हैं लेकिन गुल्ली डंडा भी नहीं खेलते।
क्या करें वो बेचारे, जब जगह ही नहीं उनके पास कहां खेलेंगे बेचारे।
हमारे जो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल जो घरों में बन रहे हैं उसमें क्लास जो है वो एयर कंडीशनड है, लेकिन बाहर खेलने के लिए ग्राउंड नहीं।
आदिल साहब, आपको मैं एक और बात बता दूं, अब कैंटोनमेंट में उन्होंने फैसला कर लिया और हमारे जजों ने इस्लामाबाद में फैसला कर लिया कि स्कूल घरों में नहीं बन सकते।
Which I think would be a good thing if implemented.
नहीं, but point ये कहां बनेंगे फिर? हवा में तो नहीं हो सकते, घरों में ये तो नहीं बन रहे, इसलिए तो नहीं बन रहे कि लोग सोचते हैं कि बनाने चाहिए, इस वजह से बन रहे हैं कि जगह ही नहीं है। अभी मैं पूछा था बीकन हाउस की मिसेस कसूरी से, उन्होंने बताया कि उनके आज भी 65 या 70% स्कूल घरों में है, बिकॉज आपके प्लानर्स ने स्कूल्स की जोनिंग रखी नहीं। तो क्या करें, अब प्लानर्स का ये कसूर जोन्स हैं, आप लोगों पे तो मत डालें ना। वो घरों में इसलिए बना रहे हैं बिकॉज स्कूलों की जगह आपने बनाई नहीं। आप इस्लामाबाद को उठाकर, आपको पता है मेरा तो ये शौक है, मैं इस्लामाबाद के मैप्स देखता रहूं, DHA के मैप्स देखता रहूं, मॉडल टाउन के सब जगह। हम स्कूलों को स्कूल हम बड़ी कम्युनिटी बनाते, एक स्कूल बनाते हैं बस उसके अंदर। ओवर टाइम जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फिर क्या करें?
और मैं जो बात बिल्कुल आई एग्री विद यू, मैं ये यकीनन नौजवानों का कसूर नहीं है कि वो इस लाइब्रेरी नहीं जाते, ये कसूर ये है कि हमने उनकी जो स्पेस टू बी यंग है, जिसको लफ्ज तो गलत है लेकिन जब हम जानते तो कहते थे कि लफंड्री करना बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत ही आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप नौजवानी में मिस्टेक्स नहीं करेंगे, अगर आप नौजवानी में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे, तो आप कब करेंगे? सो कहने का मकसद बिल्कुल वही है जो आप कह रहे हैं कि द स्पेस टू बी पार्क्स की जो बात है, 100 में से 20 होंगे जिनके पास एक्सेस टू अ पार्क हो, एक्सेस टू अ पार्क।
नॉट कि यही कह रहा हूं ना कि हमारे सबसे बड़े पार्क्स इस वक्त लाहौर में 8 गोल्फ कोर्सेस हैं, 8 पोलो ग्राउंड्स हैं। और हमारे पास दो लाइब्रेरी, एक गोरा छोड़ गया था, एक हमने जिना लाइब्रेरी बनाई है। अब आप खुद देख लें कि हमने तो कोशिश ही नहीं की, हमने सड़कें माशाल्लाह बेतहाशा बना दी, लाइब्रेरी कम्युनिटी सेंटर है ही कोई नहीं।
और दैट इज व्हाट वी फाउंड इन एंगेजमेंट, कि द स्पेस टू एंगेज, आप एंगेज के लिए एक फिजिकलिटी चाहिए, एक स्पेस चाहिए। इसमें अगेन जो हमने नौजवानों से आइडियाज हमें मिले, दे वर वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। वो बहुत सारे ऐसे थे जो आपसे भी हमने कई बार सुने हैं, ये जो कम्युनिटी सेंटर वाली बात, कि बेसिकली व्हाट दे वर आस्किंग फॉर इज कि कोई ऐसी जगह जहां हम हैंग आउट कर सके। कि हम लाइब्रेरी का जब सोचते हैं तो हम पहले किताब का सोचते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी जो फिजिकलिटी, उसकी स्पेस है, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। आपको एक तरह से वो एक फ्रीडम देती है टू इंटरैक्ट, टू एंगेज। हमें सजेशन जिस किस्म की आई ना, मसलन दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। मसलन ये कि आप एक नेशनल प्रोग्राम करें जिसमें से यंग बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके एक्सचेंज प्रोग्राम, जिस तरह लोग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ना, कि दूसरे मुल्क जाके महीना गुजारो। लोगों का यार दूसरा मुल्क तो बाद की बात है, पहले हमें बलूचिस्तान वाले को सिंध तो जाने दो ना, सिंध वाले को जरा मौका दो कि थोड़ी देर आके एक 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 सेमेस्टर पेशावर में पढ़ ले।
आपको याद है कि एक चीज़ होती थी जब हम बच्चे थे तो ट्रैवल के लिए एक चीज़ होती थी जो बड़ी, मतलब आप तो मेरा नहीं ख्याल कर सकते, उस ज़माने में कर सकते थे, यूथ हॉस्टल।
हाँ,
जिसमें मंजी मिल जाती थी और आपको रहने की जगह मिल जाती थी और बच्चे पैर हो जाते थे और बड़ा चीप होता था। अब हमारे मुल्क में मेरा ख्याल इस किस्म की चीज़ भी नहीं रही। तो अगर बच्चे को ट्रैवल करना चाहें, लेट से उनके पास कोई थोड़ा सा समर में वक्त हो और वो कहें जी चलो हम नथियागली चल जाते हैं या सैर कराते हैं पहाड़ों की या बलूचिस्तान चले जाते हैं, आई डोंट थिंक यूथ हॉस्टल्स भी अवेलेबल है या हैं।
बिल्कुल, और एंड देयर इज अ डिमांड। सो हम वी केप्ट हियरिंग फ्रॉम यंग पीपल, मुख्तलिफ अंदाज में आती थी लेकिन डिमांड बेसिकली यही थी। और एक आप इंटरेस्टेड होंगे कि उनका लोकल गवर्नमेंट पे एतबार ज्यादा है और एक डिमांड ये है कि लोकल गवर्नमेंट को आप यूथ सेंटर कर। मुझे याद है कि हम कोयटा के बाहर एक कर रहे थे फोकस ग्रुप, उसमें एक यंग बच्चे ने बड़ी क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया। वो कहता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट आप बना देंगे तो आपकी सियासत ऐसी है कि इट इज मोर लाइकली कि यंगर पॉलिटिशियन जो है वो शुरू करेगा लोकल गवर्नमेंट, और इट इज मोर लाइकली कि उसको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए।
ये बड़ी मजेदार बात है क्वाइट फ्रेंकली। एंगेजमेंट में एंगेजमेंट तो लोकल लेवल पे ही हो सकती है। मैं इस्लामाबाद में तो मेरी एंगेजमेंट नहीं आदिल साहब, इस्लामाबाद में तो हम लोग इंगेज नहीं हो सकते, वो तो बहुत दूर है, हमसे बहुत दूर है इस्लामाबाद। अगर लाहौर में कोई लोकल गवर्नमेंट तो मैं भी इंगेज हो सकता हूँ, यूथ भी इंगेज हो सकती है, और अगर मोहल्ले की गवर्नमेंट हो वहाँ तो यूथ और इंगेज हो सकती है। तो इसलिए आई थिंक लोकल गवर्नमेंट के बगैर आगे जाना मुश्किल है। पर आदिल साहब मैं आपको एक और तरफ ले आऊँ। अब मैं आपके यूथ जो जवान आइडियाज़ हैं उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जवान आइडियाज़ में जो मैंने दो तीन मार्क किए हैं, ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं है, मैंने जो दो तीन मार्क किए हैं इसके अंदर ये कह रहे हैं एनलार्ज द टीच फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम टू इंसेंटिवाइज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स टू टीच। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास टीच फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम तो बहुत ही छोटा है और अमन फाउंडेशन का है, सरकार का तो है ही कोई नहीं।
हाँ
ठीक है नहीं, और सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं लैपटॉप कंप्यूटर या वो हैं कि इनके इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है?
मेरे ख्याल में आप यू पुट द फिंगर अगेन ऑन द पल्स की आप अगर सोचें कि जब बच्चे ये कह रहे हैं कि नौजवान ये कह रहे हैं कि ये टीच फॉर पाकिस्तान करो, तो वो क्या कह रहे हैं? वो दो काम कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि यूज अस, उनमें से जो पढ़े लिखे हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें इस्तेमाल करो अगर तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिलता, तो दे आर वॉलंटियरिंग। दूसरा दे आर सेइंग कि तुम्हारी क्वालिटी का मसला है, राइट? इनडायरेक्टली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एड्रेस दैट कि अगर तुम्हारे पास लिमिटेशन है टीचर्स की और क्वालिटी की तो यूज अस। आप उसी में जो इससे रिलेटेड है विच इज ऑन द सिमिलर लाइंस, इसके आप देखेंगे उसमें से कई जवान आइडियाज जो हैं वो हैं अबाउट रीसर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। हंसी भी आती है लेकिन अच्छी तरह हंसी आती है कि यू नो वो कहते हैं कि एक जो टीचर है ना उसको 5 साल बाद उसका इम्तिहान,
बिल्कुल सही,
क्योंकि वो हमारा इम्तिहान लेने का है लीरा।
दूसरी आदिल साहब आप देखें कि आपको याद होगा जब आप माशाल्लाह नए नए पढ़ के आए थे यूनिवर्सिटी से, और मुझे भी याद है वो जमाना, हम में बड़ा जज्बा था और हम बहुत चाहते थे कुछ ना कुछ करना,
इनमें भी है
ठीक है ना, सब सब यूथ में होता है। मैं तो बात करूं, मैं तो अपना आपका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, मुझे आज भी बच्चे नजर आते हैं जो नए नए पढ़ के आते हैं ना, उनमें एक वलवला होता है, वो चाहते हैं कुछ करना, वो उनके अंदर मतलब पैशन होती है। उनको अगर आप भेज देना खुशदर पढ़ाने के लिए तो वो चले भी जाएंगे, ठीक है ना, साल दो साल अपनी जिंदगी को लगाना चाहते हैं, ठीक है ना जी।
पर 65% नौजवान जिससे हमने बात की वो कहता है कि उसके ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आज और आइंदा रोशन है। अब इसका मतलब क्या है, या ये नारा है? मेरे ख्याल में नारा नहीं है। He is doing two things. They are saying कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा ये हक है, हमारी ये डिमांड है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो। हमने सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे वालदैन से बेहतर है और बेहतर होगी या नहीं। मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी से Our life is and will be better than our parents. ये वो prediction नहीं कर रहे, ये वो आपसे demand कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि मैं expect करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन साथ साथ वो वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि I am ready to work for it.
Right, right.
मैं अपना हिस्सा डालने को तैयार हूँ।
तो क्या चीज़ है जो रोक रही है?
Politician जो मुझे space था।
क्या वजह है कि शहबाज शरीफ जैसे माशाल्लाह इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इतना वो कुछ कर लेते हैं, क्या ये छोटी सी चीज़ टीच फॉर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकते? क्या बुरी बात है? मैं देखता हूँ इतने बेबहा बच्चे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज से, अंग्रेजी भी फरफर बोलते हैं, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, उनमें सब कुछ है और उनमें जज्बा भी है। तो उनका जज्बा यूटिलाइज हम क्यों नहीं करते? क्यों हम उनको ज़ाया होने देते हैं?
ये डीपर क्वेश्चन है। इसमें आपका जो पुराना काम है और एंटरप्राइज पे, उसको मेरे ख्याल में किसी तरह मिलाना पड़ेगा। मेरे पास सच्ची बात यह जवाब नहीं है कि क्यों नहीं होता, होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ से अगर आप पूछेंगे वो कहते हैं हाँ जी जरूर होना चाहिए, लेकिन फिर सवाल है कि क्यों नहीं होता। आई थिंक हमारा जो मॉडल है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वो अभी तक, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हम मैं सिटीजन भी, वो अभी तक एक तरह से कॉलोनियल टॉप डाउन है।
बिल्कुल सही,
ये सरकार करेगी। अच्छा, ये मैंने जैसे मैंने पहले शिक्र में बात की, दिस वाज माय पर्सनल लर्निंग, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था इस रिपोर्ट को लिखने में, क्योंकि सारी उम्र मैंने रिपोर्टें लिखी हैं और खुद बैठ के लिखी, और वो जल्दी भी हो जाती हैं, आसानी से भी हो जाती हैं। जब आप दे देते हैं ना किसी और को, जब आप ये कहते हैं कि आई एम रेडी टू शेयर दिस, तो वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है। सो ये जो कहना है ना कि ये टीच फॉर पाकिस्तान हो या एंटरप्रेन्योरियल हो, इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन जो हमारी सिटीजन की भी डिमांड है और हमारी गवर्नमेंट की भी इल्लत है कि हम ऊपर से प्लान बनाएंगे, बनाने से पहले पूरा फैसला कर लेंगे कि ये कैसे चलेगा।
बिल्कुल,
इसमें इतनी ईंटें लगेंगी, इतना सीमेंट लगेगा, इतना पानी लगेगा।
बिल्कुल,
हमारी एक इंजीनियरिंग अप्रोच है।
बिल्कुल सही, एब्सोल्यूटली करेक्ट। हां,
मैंने और तारिक बिनूरी ने बहुत साल पहले, आज से कोई 12 साल पहले, वी डिड अ सेट ऑफ बुक्स ऑन पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें हमने एक, यू विल आई थिंक लाइक दिस, उसमें हमने कहा यार कि ये जो पॉलिसी के जरूरत को 3-4 डिफरेंट मॉडल, एक जो मॉडल है जो पाकिस्तान में डोमिनेंट है वो इंजीनियरिंग मॉडल, और वो मॉडल ये है कि आप टोटल प्लान करते हैं।
बिल्कुल सही,
शुरू करने से पहले आपको पता होता है कि आपका एंड गोल क्या है,
ठीक,
आप नक्शा बनाते हैं, इतना सीमेंट, इतना ईंट, इतना पानी, और फिर आप उसको लेके जूं का तू इंप्लीमेंट कर देते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तुमने सही किया कि नहीं। दूसरा एक मॉडल जो है वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का, ग्रोथ का, ये हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ इन नॉट इन इकोनॉमिक सेंस, लेकिन स्केल अप कैसे होती है। तो स्केल अप जो है बिल्डिंग वाला मॉडल ये है कि आप एक फ्लोर बनाते हैं, दूसरी बनाते हैं, तीसरी बनाते हैं, लेकिन प्लान करके बनाते हैं। दूसरा मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है, जो जिस तरह यू नो स्ट्रीम इनटू रिवर इनटू सी, कि आप छोटे से शुरू करते हैं, उसके साथ उसको बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं, फ्रेंचाइज करते रहते हैं, और फिर वो ग्रो कर जाता है, छोटे से टीच फॉर पाकिस्तान
में एक्सपेरिमेंटेशन भी कर लेते हैं,
एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, हमने कहा है कि यार क्योंकि हम दोनों एनवायरमेंट वाले लोग हैं, हमने कहा एक तीसरा मॉडल भी है ऑफ ऑफ स्केलिंग अप, जिसको हम कहते थे स्केलिंग आउट, और हमने कहा वो है कि जंगल जो है ना, दरख जो है, ये कैसे ग्रो करते हैं? तो किसी ट्री की वाइटैलिटी ये नहीं होती कि वो दरख कितना बड़ा हो गया। ट्री की वाइटैलिटी, दरख की वाइटैलिटी ये होती है कि उसकी वजह से और कितने दरख पैदा हो,
जंगल कितना स्ट्रॉन्ग हो
रहा है, थ्रो किया। सो एक दरख से दूसरा दरख, तो उससे जुर्म, उससे एक जंगल। सो कहने का मकसद ये है कि ये अ लॉट ऑफ दीज आइडियाज लाइक टीच फॉर पाकिस्तान, आई डोंट थिंक ये वर्क करते हैं इंजीनियरिंग मॉडल में, कि आप ऊपर से प्लान करें और फिर आप बटन दबा दें और ये शुरू हो जाए। आई थिंक ये सेकंड और थर्ड मॉडल जो है عموماً بزنس جو ہے وہ سیکنڈ ماڈل پہ جاتی ہے, سول سوسائٹی تھرڈ پہ جاتی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ جو ہے تو یو نو کلیشے ہے, لیکن واٹ وی فاؤنڈ واز کہ مسائل سیریس ہیں لیکن دا ولنگنیس ٹو ورک فار دیم امنگس دا ینگ از امیزنگلی.
بالکل صحیح, وہ جو میں کتاب میں اپنی کتاب میں لکھتا ہوں کمپلیکسٹی جو چیز ہے نا, کمپلیکسٹی از نیو لٹریچر دیٹ کمز آؤٹ. آپ بھی جاتے رہے آئی ایس آر کی میٹنگس میں, کمپلیکسٹی میں جو اپروچ ہے وہ کہتے ہیں جی باٹم اپ سسٹمس, جیسے ایولیوشن میں بھی ہوتا ہے باٹم اپ سسٹمس ہمارا بیسٹ, اینڈ یو ڈونٹ ٹرائی اینڈ پری پروگرام ایوری تھنگ, یو ٹرائی اینڈ کیا کہتے ہیں ان اے سینس لیٹ دا سسٹم گو ویئر اٹ وانٹس ٹو گو اینڈ ٹویک اٹ ایز یو گو الانگ. خیر یہ ایک اور گفتگو اس کو چھوڑ دیتے ہیں فار اے مومنٹ. میں آپ کو ایک اور جوان آئیڈیا پیش کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بڑا پسند آیا. وہ کہتے ہیں انٹروڈیوس پرفارمنگ آرٹس اینڈ آرٹ اپریسیشن ارلی ایئرز آف ایجوکیشن. اس کے ساتھ ہی آگے ریلیٹڈ ہے کہ سیٹ اپ اوارڈز فار آرٹس اینڈ پرفارمنگ آرٹس فار ہائی اسکول. تو لگتا ہے کہ جوان جو ان سے ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آرٹس اور پرفارمنگ آرٹس کا بڑا رول ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹ جو بزرگ ہیں بوڑھے میری عمر کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ بس انجینئرنگ پڑھاؤ اور ہم گاڑیاں بنا لیں تو ماشاء اللہ ہم ترقی کر جائیں گے. میرا خیال یوتھ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ نہیں.
اور اگین صحیح بات کہہ دوں کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں دیٹ ڈزنٹ مین کہ آل آف دیم اگری ود دیم,
لیکن ٹھیک ہے آئیڈیا تو ہے,
لیکن ایسے ہمیں بہت سارے آئیڈیاز ہیں. ون آف مائی ادر فیوریٹ ونز واز کہ شہر کی دیواریں جو ہیں یہ نوجوان آرٹسٹ کو دے دو.
بہت
دنیا میں آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھی ہے, بہت سارے ممالک میں گرافیٹی جو ہے وہ ایک طرح سے آرٹ ہوتا ہے.
بالکل
اچھا, انہوں نے کہا یار یہ آرٹسٹ یہ گیو اٹ ٹو دیم, ان کو بجائے آپ یہ جب انڈر وے بناتے ہیں تو ایک اس میں ایک میکینیکل سی تصویر بنا دو, گیو اٹ ٹو ینگ پیپل, لیٹ دیم ایکسپیریمنٹ. کچھ تھوڑی بہت اوکھی بات بھی کر دیں گے لیکن وہ کوئی انٹرسٹنگ چیز بھی ہوگی. لیکن اس کا میرے خیال میں جو ڈیپر میننگ ہے وہ ایک اور چیز سے ہے, اور وہ کریٹیکل تھنکنگ سے.
ایگزیکٹلی
رائٹ, سے ہم یہ جو ہم بات کرتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ سکھاؤ کریٹیکل تھنکنگ سکھاؤ, یہ کیسے سکھاتے ہیں؟ ایسے تھوڑی سکھاتے ہیں کتاب ہوتی ہے پڑھ لو اس کے بعد آپ کریٹیکل تھنکر ہو جاتے. لیکن آرٹ از ون آف دا ویز دیٹ فورسز یو ٹو تھنک کریٹیکلی.
بالکل,
جب آپ ایک ورک آف آرٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ایویلویشن کرنی ہے. ناؤ دیٹ ٹائپ آف ٹریننگ آپ کو بہتر کار ڈیزائن کرنے میں بھی یوزفل. اگر آپ اس قسم کی ٹریننگ کو نکال دیں گے اور ساری ٹریننگ جو ہے وہ میکینیکل ہوگی کہ یہ فارمولا ہے, یہ کیمسٹری کی لیب ہے, یہ انجینئرنگ کے چار اصول ہیں, تو اس سے آپ تقلید تو کر سکیں گے لیکن آپ کریٹ نہیں کر سکیں.
دیکھیے جی ہیومینٹی,
یہ جو آرٹ والے ہیں یہ اس لیے اسٹرائک کرتے ہیں کہ دس واز اے دے سجیسٹ کہ دے آر ریڈی ولنگ اینڈ ایگر to engage critically.
And I got you that I think they are displaying a deep inner tendency jo humanity mein hai. Humanity basically creativity ke liye bani hai, theek hai ji, aur wo display kar rahe hain ki ji hamare andar jo creative edges jaise unko nikalne de, hame creative hone de, aur humne jo koshish ki hai society mein jisse humne kafi mera khayal kharabi ki hai ki humne pichle 30-40 saal se humne to creativity ke مارنے کی کوشش کی. ہم نے کہا کہ بھائی یہ نہ کرو, انجینئرنگ پڑھو صرف, ٹھیک ہے, باقی ڈیزائن آرٹ یہ کریٹیکل تھنکنگ اس کو بھول جاؤ, یہ کرو ہی نہ. اور آپ کے جو یوتھ کی جو میں بات میں نے سنی, مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ یہ واقعی اس طرف جا رہے ہیں, جو کہ ہم اپنے بڑے بڑے مفکروں کو اور ایچ ای سی کو کنونس نہیں کر سک رہے کہ بھائی سوشل سائنس اور آرٹ وغیرہ کی طرف بھی جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں صرف انجینئرنگ پڑھاؤ ہم بڑھ جائیں گے.
And this relates to جو ایک جنرل چیز ہے جو اس رپورٹ جب سے آئی, کئی بار مجھ سے پوچھ جاتے ہمیں کیا کرنا ہے, یو نو, اینڈ عموماً وہ میری عمر کے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ سارا ہے تو آپ بتائیں کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اینڈ مائی لرننگ از کہ یار ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے, رستے سے ہٹ جانا چاہیے. سو یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ وی ہیو ٹو سم ہاؤ ڈیفائن فار ینگ پیپل کی گڈ اور بیڈ کیا ہے, کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولڈر جنریشنز کا کوئی فرض نہیں رہا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو سم ریسپیکٹ فار دیئر آئیڈیاز. ہم جو چیزیں ہم اپنی نوجوانی میں نہیں کر سکے, وی کین ناٹ امپوز دیم آن دا ینگ پیپل ان دا 21st سینچری, کیونکہ ان کے مسائل فرق ہیں, ان کا دنیا فرق ہے, ان کے پاس وسائل فرق ہیں, ان کی ابلٹیز فرق ہے. لیکن دی ون آف دا تھنگز جو جب آپ جوان ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں کہیں بھی, یو وانٹ سم تھنگ ٹو ایکسل ان, جس سے آپ کا ٹیکا ہو, جس سے آپ کی پہچان ہو کہ میں اس چیز میں اچھا ہوں. چاہے وہ تبلا بجانا ہو، چاہے وہ ڈرم بجانا ہو، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ تقریر ہو، لیکن گیو پیپل سم تھنگ ٹو ایکسل ان رادر دین کہ ہم ان کو ایک ڈبے میں بند کر دیں کہ یار اچھا نوجوان ایسا ہو.
عادل، اس میں ایک اور چیز کہوں، ایز یو آر اسپیکنگ مجھے ایک اور خیال آیا کہ جو انگیجمنٹ کا مطلب ہے، کیا یہ نہیں ہے کہ ہمیں یوتھ کے ساتھ اور آپس میں بھی ایک نیشنل ڈبیٹ نیریٹو کچھ تو ہونا چاہیے؟ آئی مین آئی ڈونٹ مین ٹو سے اٹ ان ٹرمز آف کہ جی کوئی نیشنل کو ایسا بڑا کوئی ڈیفائن کر کے یہ وہ، جو حیرانگی جو آپ کے ساتھ میں کئی دفعہ بات کر چکے، پہلے پوڈ کاسٹ میں بات ہو چکی ہے، ابھی بھی آئی تھنک کیا یوتھ یہ فیل کرتے ہیں، کیونکہ جو ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈبیٹ ہی نہیں ہے، ایشوز جو ہیں وہ ایک قسم کے کچھ تھوڑی دیر اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پر کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. جیسے کہ ہیلتھ ہے، ہیلتھ کے اوپر کوئی ہماری نیشنل ڈبیٹ نہیں کہ بھائی ہیلتھ کیئر سسٹم کیا ہونا چاہیے. جیسے کہ امپلائمنٹ کی آپ نے بات کی، امپلائمنٹ پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے کہ بھائی امپلائمنٹ ہے کیا، کس قسم کی ہوتی ہے، کوالٹی آف امپلائمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، بنتی کیسے ہے نوکری، یہ ڈبیٹ ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں.
بالکل. اور اس میں اگر آپ خصوصاً سیاست میں دیکھیں تو دو آبزرویشنز، پہلی یہ کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ایوری میجر مومنٹ آف پولیٹیکل چینج، ریئل چینج، واز یوتھ ڈریون، اور موسٹ آف دیم. اور دو کا میں خصوصاً اگر آپ سے ایگزامپل دوں، ایک تو تھا 1946 کی الیکشن میں جو ٹرن اراؤنڈ تھا، وہ بیسکلی جناح صاحب ڈسکورڈ مسلمان کالجز. اس سے پچھلی الیکشن میں مسلم لیگ ہیڈ ناٹ ڈن ویل، اینڈ دا ڈفرنس واز موسٹلی آپ کا علی گڑھ اسلامیہ کالج اینڈ سو آن سو فورتھ، کہ ہی واز ایبل ٹو موبلائز یہ ینگ فورس. دوسرا جو تھا وہ 71 اور ہم عموماً بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں، لیکن خالی بھٹو وازنٹ دا ون موبلائزنگ ینگ پیپل. مجیب الرحمان ان واٹ واز دین ایسٹ پاکستان ٹرنڈ اراؤنڈ دی انٹائر پالیٹکس آن ینگر پیپل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نوجوان کو یہ بالکل نظر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے، ہنستا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی پارٹی ان کو اگنور نہیں کر سکتی. جلسہ ان کے لیے ہوتا ہے، جلسے کی مینجمنٹ ان کے لیے ہوتی ہے، میوزک ان کے لیے ہوتی ہے، لیکن دیر از کلیئر سینس جو آپ کی رپورٹ میں بھی نظر آئے گی کہ کیا ہم ایکچولی انگیج کیے جا رہے ہیں بائی دیز پارٹیز. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو یوتھ والا ووٹ ہوتا ہے نا، ہمارا جو تھا سروے وہ کہتا ہے کہ 80% آف ینگ مین اور 60% آف ینگ ویمن انٹینڈ ٹو ووٹ ان دا نیکسٹ الیکشن. اگر ہمارے نمبر صحیح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشن آ رہی ہے کچھ مہینوں میں، اس سے لے کے ہر الیکشن 2040-2050 تک ول بی ڈیفائنڈ بائی نیو ینگ ووٹرس. اچھا، اور یہ ووٹر جو ہے وہ نعرہ ویسے نہیں لیتا. سو یہ جب آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ شاید اسے پورا بھی کر لیں.
عادل صاحب، دو اور جوان آئیڈیاز میں آپ کو دوں بفور کسی اور چیز پہ جانیں گے. ایک بڑی مزدار چیز ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ ویئر فیزبل کنورٹ اسکولس انٹو کمیونٹی سینٹرز ان دی ایوننگ فار یوتھ ایکٹیویٹیز. اس کے آگے ایک اور جگہ کہا ہے پروموٹ، ایکسپینڈ اینڈ سیلیبریٹ پاکستان بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرل اسکاؤٹس گرل گائڈز موومنٹس. تو لگتا ہے کہ ان میں ایک کمیونٹی، ایک گیٹنگ ٹوگیدر والی ارج ہے جس کو ہم نے آؤٹ لیٹ نہیں دیا ہوا، اور ہماری جو اربن پلاننگ ہے اس کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتی.
یہ وہی بالکل آپ کی والی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار ہمیں کمیونٹی سینٹر دو، گیو اس اے پلیس ٹو ہینگ آؤٹ، ہمیں کوئی ایسی جگہ دو جہاں ہم دوسرے نوجوانوں سے مل سکیں، آئیڈیاز ایکسچینج کر سکیں. اور یہ بڑا ایک نیچرل ینگ ٹینڈنسی ہوتی ہے.
یہ تو ہوتا ہے عادل صاحب، یہ تو تھرو دی سینچریز ہوتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے.
اور تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ہمیں سفوکیٹ کر رہے ہو کہ جو ہمارے پاس تھیں بھی چیزیں وہ بھی اب نہیں رہی، لائک اسکاؤٹس. تو وہ اس میں اسکاؤٹس کا تعلق اتنا نہیں ہے، لیکن سم کمیونٹی ایکٹیویٹیز کا کوئی ایسی چیز جس سے ہمارے کراس فرٹیلائزیشن آف آئیڈیاز ہو. میں بجائے صرف کہ اپنے بھائیوں بہنوں اور پانچ سات کزن سے ساری زندگی گزارنے کے، میرے پاس ایک کوئی سرکل ہو، کوئی میرے اسکول کالج سے زیادہ ہو، اسپورٹس کی ٹیمیں ہوں. یہ جو ہم اسپورٹس کی اس میں بہت ہم نے بات کی ہے، وہ اس لیے نہیں کہ صرف اسپورٹس اچھی چیز ہے، لیکن اسپورٹس ایز اے کمیونٹی ایکٹیویٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ ٹیم ورک سیکھتے ہیں، آپ ڈیلنگ وتھ سکسیس سیکھتے ہیں، آپ ڈیلنگ وتھ فیلئر سیکھتے ہیں، آپ میرٹ को रिकग्नाइज करना सीखते हैं। लेकिन
मुझे
इसने
तो
अगर
कभी वो चीज़ नहीं भूली आदल साहब कि वेलिंगटन ने नेपोलियन को वाटरलू में डिफीट करके उसने एक फेमस स्टेटमेंट दी थी कि द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ईटन। और बड़ी पते की बात थी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। और गोरे ने जो हमें आके मारा वो हमारे इसी वजह से कि वो टीम वर्क कर सकता था, हम कर ही नहीं सकते थे।
ये जो हम मेरिट मेरिट की बात करते हैं, अगर आप सोचें कि हमने, मेरा बड़ा पेट पीव है, मैं एक नेगेटिव भी इसके बाद बात करूं कि हमने मेरिट को बना दिया है सीनियोरिटी, राइट समहाउ कि अगर सीनियर आदमी को छोड़ के जूनियर बना दे को आगे कर दे तो कहते हैं जी मेरिट को आपने इग्नोर कर दिया। माय सेंस ऑफ मेरिट ऑलवेज वाज कि जिसके पास भी ज्यादा स्किल है, एबिलिटी है, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, बुड्ढा हो, लड़की हो, लड़का हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, कहाँ का हो, दे शुड हैव द एबिलिटी अब टू मूव। कहने का मकसद ये है कि मेरिट अगर आप पाकिस्तान में देखें तो किस जगह प्योरली इस्तेमाल होता है, अमंग्स द वेरी फ्यू प्लेसेस लेफ्ट इन स्पोर्ट्स, क्योंकि उसमें आप, उसमें भी बहुत बहस होती है लेकिन उसमें इग्नोर करना मुश्किल है। तो स्पोर्ट्स अलाउज यू टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट टैलेंट, क्योंकि अगर मैं एज अ बच्चा एक और के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और वो जो है वो जावेद मियांदाद है, तो मैं जो मर्जी कर लूं, मैं जिस मर्जी स्कूल में पढ़ता हूं, उसकी एबिलिटी जो है वो चीख चीख के बोलेगी और मुझे ये लर्निंग हो जाएगी कि एबिलिटी को आपने रिस्पेक्ट करना। मैं जो नेगेटिव बात करना चाहता था कि यू नो आई एम जनरली अ पॉजिटिव पर्सन आई थिंक, लेकिन इसमें मैं बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन आई
स्टिल दैट हैज बीन अ बिग क्रिटिसिज्म ऑफ यू, यू आर टू पॉजिटिव।
आई नो, चलिए बताइए, आई एम प्राउड ऑफ दैट, लेकिन इसमें एक जो चीज मुझे बहुत तश्वीशनाक और मैं आई वांट टू टॉक अबाउट दैट इज कि जो रिएक्शन टू चीटिंग है, कि हमने अपनी बहुत सी जो नेगेटिव्स हैं वो आगे दे दी। मैं हर फोकस ग्रुप में पूछता था चीटिंग के बारे में, एंड जनरली आई फाउंड के एक सोशल एक्सेप्टेंस हो गई। एक आदमी तो कुछ पेरेंट्स थे उनमें भी हो गई थी, नॉट केवल लोग कहते थे चीटिंग को, ये नहीं कोई कहता था कि चीटिंग ठीक है, लेकिन जवाब ये आता था कि जी वो करनी पड़ती है क्योंकि हर एक करता। इट हैड बिकम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये मेरे रोंटे इसलिए खड़ा कर देती है कि अगर आप नौजवानी से जस्टिफाई कर रहे हैं टू चीट, तो आप आगे जाके जब आप सीनियर होंगे तो व्हाट आर द वैल्यूज दैट यू विल इंप्लीमेंट। कि एक तरह से हो गया कि एक हद तक गलत काम जो है वो उसकी एक सोशल एक्सेप्टेंस और जस्टिफिकेशन होगी, एंड दैट वरीज मी अ लॉट।
अच्छा अदिल साहब, एक और जवान आइडिया लास्ट। इन्होंने कहा है इनकरेज बाइसिकल्स इन स्कूल्स एंड डेवलप बाइक शेयरिंग प्रोग्राम्स। ये साइकिलें कहाँ चलाएंगे?
यार सही है। हम वो पहले
मुझे बड़ा शौक है साइकिल चलाने का, पर लाहौर शहर में तो साइकिल चलाना मौत को बुलाना।
जब मैंने मोबिलिटी वाले जो नंबर दिए तो आपको बताया कि 100 नौजवानों में से एक के पास गाड़ी होगी, मेक सेंस, क्योंकि उनमें से कुछ के पास तो एज ही ऐसी नहीं है कि वो कर सके।
मैंने एक दिन जब पंजाब यूनिवर्सिटी गया, सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, ऐसी बात करने, तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा भाई आपके, मैं बता दूँ आपकी फ्यूचर ये है कि एक तो हमने, आप गोल्फ खेलना शुरू करें, पोलो खेलना शुरू करें, उसके अलावा हम आपको कुछ और करने को नहीं देंगे, गोल्फ और पोलो, ठीक है, आप वो खेलना शुरू करें, और अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आई एम सॉरी। नंबर दो, आपको हमने लाहौर में तो घर देना ही नहीं, क्योंकि लाहौर में घर बहुत महंगे हैं, आपको इतनी तनख्वाह कभी ले नहीं सकेंगे। 10 करोड़ का घर है लाहौर में, तो आप 10 करोड़ का घर अगर नहीं ले सकते तो फिर मेरा ख्याल काने काचे से आगे, बल्कि उससे भी आगे कहीं, आप मेरा ख्याल जमशोरों में जाके घर लें और लाहौर में काम करेंगे, देखेंगे, चल जमशोरों में भी नहीं आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़, गाड़ी भी हमने आपको नहीं लेने देनी, वो गाड़ी भी बहुत महंगी हो जाएगी, और हमने बाइसिकल तो आपको चलानी ही देनी, तो करना क्या।
लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये कि यार गाड़ी एक तो समझ आती, 100 में से 12 के पास मोटरसाइकिल होगी और 10 के पास साइकिल होगी। तो मैंने इमीडिएटली सोचा कि जब मैं उस उम्र में था, मैं स्कूल जाता था साइकिल, सो मैं तकरीबन आप समझ लें 6th से लेके 12th तक मेरे पास सौराव साइकिल होती थी, वो साइकिल लेके बाद में आप स्कूल जाते थे, वहां साइड पर रख देते थे और फिर वापस आ जाते थे। बट ये जो मोबिलिटी है ये बड़ी शानदार चीज होती है, ये मोबिलिटी जो है ये फ्रीडम होती है। मोबिलिटी जो है वो रास्ते में रुक के छली खाना होती है, मोबिलिटी जो है वो रास्ते में ओल्ड बुक शॉप जाके पुरानी किताबें देखना होती है। सो साइकिल आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि उसको चलाने के लिए कोई जगह आपको देनी होगी, लेकिन इन अ वे अगर हम, और ये अर्बन प्लानिंग वाला मसला है, हमने ना सिर्फ ये है कि जगह नहीं है लेकिन साइकिल वाले डिस्टेंस भी नहीं रहे ना। आपने आपने जिस तरह आपकी अर्बन स्पेसेस प्लान हुई है वो साइकिलेबल भी नहीं है। एक तो रोड नहीं है, दूसरा ये है कि कौन सी जगह से कौन सी जगह आप जाते हैं, स्कूल आपका कितना करीब है, मार्केट कितनी करीब है।
तो मैं आपको कह रहा हूँ, फिर आप मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गए ना।
हाँ, बिल्कुल।
अगर शहरों में आपने उमरा की कोठियाँ बनानी है, एक एक कनाल की या दस दस मरले की या दो दो कनाल की, और आपने शहर को फैला देना है, जैसे हमारा शहर अब कसूर से सियालकोट तक चला गया,
हाँ।
और मेरा ख्याल बहुत जल्द कुछ देर रह जाएगी, मेरा ख्याल अब हम अपनी ज़िंदगी में ये देख लेंगे, इतनी देर नहीं होगी कि इस्लामाबाद और लाहौर में एक शहर होगा बस पूरा, ठीक है। क्योंकि हम एक मोटर सिटी बनाने जा रहे हैं, उस मोटर सिटी में हम सिर्फ गाड़ियों का निज़ाम चाहते हैं, हम कोई और मोबिलिटी चाहते हैं। मोबिलिटी ओनली मीन्स कार्स और वेरी एक्सपेंसिव मेट्रोस। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई मेरी टांगे में मोबिलिटी है, मेरी टांगों को भी चलने दो। वो बंद कर दिया हमने, साइड वॉक्स ही ख़त्म कर दिए हैं लाहौर में, सर साइड वॉक्स ही कोई नहीं है, इस्लामाबाद में ही कोई नहीं, साइड वॉक्स ही ख़त्म हो गई हैं, बाइसिकल लेन तो आप छोड़ें। तो फिर मोबिलिटी जो आपका बच्चे जो हैं, जो एक गाड़ी लेके बैठे हुए, 10 मोटरसाइकिल लेके बैठे, बस वही चलेंगे, बाकी तो कोई नहीं चल सकता। बाकी तो जो 87 है वो बेचारे रोएंगे बैठ के।
आपको एक और बड़ी तश्वीशनाक बात बताऊं, ये हमने पूछा नहीं, लेकिन मेरा शक ये, और ये मेरा शक आता है फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज वाइस चांसलर एट लम्स, क्योंकि हमने वहां ये साइकिलें खड़ी कर दी, उनका जिसने ले जानी ले जाओ, अपना कार्ड दो और दो घंटे के लिए ले जाओ मुफ्त। वन ऑफ द थिंग्स यू लर्नड इज कि आई वुड लाइक टू नो कि हमारे व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल नो हाउ टू राइड अ बाइक। सो वन ऑफ द थिंग्स वी लर्नड वाज कि अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, स्पेशली वुमेन, साइकिल चलाना नहीं आता, क्योंकि जाहिर है अगर आपको शुरू से अपॉर्चुनिटी नहीं है, साइकिल चलाना कोई इतने मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप सीखेंगे भी नहीं। कहने का मकसद ये है कि ये मेरे ख्याल में ये साइकिल से बड़ा जो मसला है वो मोबिलिटी एंड फ्रीडम का, और उस फ्रीडम से आइडियाज आते हैं, उस फ्रीडम से यू नो फ्रेश एंटरप्राइज।
मेरी गुजारिश है कि मोबिलिटी तो मींस अ कार एंड अ मोटरसाइकिल। हमारी अर्बन प्लानिंग में देखिए ना, मेरी गुजारिश है कि अर्बन प्लानिंग में हमारी कार एंड मोटरसाइकिल मोबिलिटी, एंड यू आर टेलिंग मी ओनली 12 और 13 किड्स हैव दैट, द 87 आर आइदर ऑन अ बाइक और वॉकिंग, तो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोबिलिटी,
दे आर एक्सक्लूडेड और दे आर डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट ऑन हू, मतलब पॉइंट ये
है, किसी और पे जिसके पास गाड़ी है, राइट? तो आपने आपने एक जगह से, सो बिल्कुल आप उनको उनकी वो डिपेंड हो गया ना, कि जिस तरह जो खवातीन का वर्किंग का मसला है उसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि मैं दफ्तर कैसे जाऊँ।
अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बच्चों से इनसे कह रहा था कि भाई आपको घर तो मिलना नहीं, तो आपके बच्चे कहते वॉन्ट अ हाउस, पर उनको घर कहाँ मिलेगा आदल साहब?
And that goes back to urban planning. के और नदीम, ये भी आपका favorite topic है। देखें, अगर आप इस वक्त जो है 200 million plus का मुल्क है, you are going to go at least to 300. आप कितनों को गाड़ियां दे देंगे? और जब दे देंगे तो वो गाड़ियां कहाँ चलाएंगे?
नहीं सर, वो घर कितनों को देंगे, कहाँ से देंगे
वो, और घर कहाँ लेंगे?
आप मुझे बताएं, 300 million लोग, अगर आप कनाल का घर बनाना है तो आपका जमीन ही नहीं रह जाएगी, क्या करेंगे?
और अच्छी बात यह है कि दूसरे मुल्कों ने, दुनिया ने ये एक मसले कन्फ्रंट करके कम से कम कुछ सलूशन निकाले कि आपके पास शहर और होने चाहिए, आपके पास अर्बन प्लानिंग में यू नीड टू थिंक लाइक कम्युनिटी, नॉट बाय
फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में डाला था, आपको याद होगा कि वी वांटेड क्रिएटिव सिटीज, और हमने कहा था शहर की डेफिनेशन ये है कि हाई राइज, कि लोग फ्लैट्स में जाएं, कोठियों से बाहर निकल के फ्लैट्स में जाएं। आपके जो डीएमजी जो कंट्रोल करता है शहर को, या कंटोनमेंट, दोनों जगह शहर को जो कंट्रोल करते हैं, वो कहते हैं हमने फ्लैट्स तो बनने नहीं देने, बड़ी मुश्किलों से थोड़े थोड़े फ्लैट्स बनते हैं, वो भी चार चार पाँच पाँच छः छः करोड़ के होते हैं, ठीक है जी, बिकॉज सप्लाई इतनी लिमिटेड है। वो कहते हैं एक तो सप्लाई हमने फ्लैट बनने नहीं देना, दूसरी चीज़ जो है अगर फ्लैट नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी, ठीक है, और फिर आप अगर गाड़ी को फेवर करेंगे तो ऑब्वियसली यू गोना मेक वाइडर एंड वाइडर रोड्स विद हाई स्पीड, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने बना दिया सिग्नल फ्री कॉरिडोर। अब सिग्नल फ्री कॉरिडोर बाय डेफिनेशन इज गोइंग टू बी बोथ बाइक एंड वॉक अनफ्रेंडली, बिकॉज गाड़ी ने तेज चलना है, ठीक है जी। अब जो अमरीका में मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, या यूरोप में, वो तो अब गाड़ियों को शहर से बाहर निकाल रहे हैं और साइकिलों को और पैदल आने की बात कर रहे हैं, ज़्यादा बसों की बात कर रहे हैं। हमने बसें भी जो बनाई हैं वो पेडेस्टल पे बना दी हैं, अगर हमारी बसें पेडेस्टल पे हैं, लोग कितनी मुसीबतों से बस पकड़ते हैं, फिर कितनी, और फिर उसके आगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन मैं यूज़ करता हूँ वो ये है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज समथिंग दैट हैपन्स बिटवीन वॉक्स. इफ़ यू टेक योर कार टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो देन इट्स नॉट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि फिर यू ऑल्सो यू यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना जी. सो द क्वेश्चन इज कि हमारे शहर तो बच्चों के लिए बिल्कुल अनफ्रेंडली हैं, ना बाइसिकल चला सकते हैं, ना पैदल चल सकते हैं, ना फ्लैट्स हैं, ना डेंसिटी है. बच्चा जो असल फ्लरिश करता है जबकि वो फ्लैट से निकले, नीचे आए, कॉफ़ी शॉप में जाए, कॉफ़ी शॉप से निकले शॉपिंग मॉल चला जाए, वहाँ से थिएटर पे जाए, ये वो, ये तो हमने ज़िंदगी ख़त्म की हुई अपने मुल्क में.
और नेबरहुड जो है, आई थिंक इन सम वेज तो ये बड़ा क्लियर है कि वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ नेबरहुड, जिसको मोहल्ला कहते हैं,
जो हमारा पुराना मोहल्ला होता था.
हाँ, मोहल्ला होता था. देखा आपकी, आप यू यूज टू ग्रो अप इन अ मोहल्ला.
बिल्कुल बिल्कुल.
आपके दोस्त उसी में होते थे, आपकी एंटरटेनमेंट उसी में होती थी.
सारे चाचे मामे होते थे, सारे चाचे मामे होते थे. हमारे हाँ. जो नेबरहुड का बुजुर्ग, हमें मोहल्ले का बुजुर्ग अगर डांटता था ना तो हमारी जान निकल जाती थी.
राइट. वो अपना हक समझता था कि डांट सकता
था. बिल्कुल बेटे, क्या कर रहे हो, हम तो बैठ जाते थे सर.
सो कहने का मकसद ये कि ये जो कम्युनिटी कम्युनिटी की हम बात इस पूरी रिपोर्ट में सुनते हैं, वो वही डिमांड है कि जब जो देखिए ये जो मोबिलिटी की कॉस्ट ऑन द यंग इज ग्रेटर देन ऑन द ओल्ड. और क्यों ग्रेटर है, क्योंकि यंग जब आप होते हैं तो आपकी मोबिलिटी पे जो कंसर्न होती है वो खाली ये नहीं होती कि आपके पास साइकिल है कि नहीं है. आपको माँ कहती है नहीं नहीं जाना, बाप कहता है घर पे 10 बजे से पहले वापस आ जाना, और भी बड़ी आपके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. तो व्हेन यू रिस्ट्रिक्ट, उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा ये फिजिकल और स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती है कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है. देखिए अगर आपका मोहल्ला और उसमें एक फंक्शनल ग्राउंड हो और आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, बस हम वहां गप लगाएंगे, लेकिन गप लगाने के लिए अगर आपके पास वो ग्राउंड ही नहीं है, या मैं जो हूँ जी रमजान में अफ्तारी वो शहरी क्रिकेट खेलो,
इवन अ टाउन स्क्वायर विल डू. छोड़े, वी डोंट. मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, वो आपने, आपको याद होगा बड़ी फेमस औरत थी मेरी, बड़ी वो फेवरेट है, जेन जेकब्स, वो कहती है टाउन स्क्वायर इज गुड इनफ. छोड़े ये जाएं
पार्क, टाउन स्क्वायर इज ब्रिलियंट है ना मेरे ख्याल में. तो टाउन स्क्वायर जो खड़ा जिस पे बैठ के,
हमारे पास तो वो भी नहीं है. आप देखें पूरे शहर में या हमारे किसी शहर में, आदिल साहब, जो एक छोटी सी चीज़ होती है जो कई दफ़ा आप देखते हैं वॉक करते हुए किसी भी सिटी में, बोस्टन में ले लें, अमेरिका, वॉशिंगटन में, कहीं भी ले लें, कि वो एक जगह लगा होता है जहाँ चेस सेट्स ही लगे होते हैं, खेल रहे होते हैं, वो भी नहीं हमारे पास. तो
और ऑल ऑफ दिस गोज बैक टू जो आपने भी कई बार जिक्र किया कि जो नौजवान हमसे ये कह रहा है कि यार तुमने मुझसे स्पेस टू बी यंग जो है उसको श्रिंक कर दिया, और उसकी कॉस्ट मुझे बहुत ज्यादा है. आई नीड कम्युनिटी, आई नीड अ स्पेस टू बी यंग. और सो इसलिए अर्बन प्लानिंग एंड स्पेस प्लानिंग को आप मेरे ख्याल में इग्नोर नहीं कर सकते.
सर जी, असल बात जो है ना, जो मैंने कम से कम जो फ्रेमवर्क में लिखी थी और जो अपनी किताब में भी, एंड व्हाट आई हैव लर्नड कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट लाइज इन अ सिटी. ह्यूमैनिटी, ह्यूमन हिस्ट्री लाइज इन अ सिटी, ह्यूमैनिटी लाइज इन अ सिटी. हमने शहर को देहात बना दिया, हमने लाहौर को भी देहात बना दिया, हमने सारी अर्बन स्पेसेस का बेड़ा गर्क कर दिया. हम सिर्फ अपना चार कनाल का लॉन और एक कोठी चाहते हैं, और वो गाड़ी लेके पंजाब क्लब या जिमखाना चले जाएं, वहाँ गोल्फ खेलें, पोलो खेलें, वापस आ जाएं, और बाकी गरीब का बच्चा तो हम देखते भी नहीं कि हमारे रास्ते में है भी कि नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आदिल साहब रिपोर्ट तो आपने बहुत अच्छी की है एंड आई लव इट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी डिबेट पता नहीं कहाँ जा रही है, क्योंकि हम इन चीज़ों की बात ही नहीं कर रहे हैं. आप देखें इलेक्शन आ रही है और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है देख के किस लेवल की डिबेट है, क्या बात हो रही है, और मतलब बस दुखी होता है. तो आखिर में बताइए आप क्या हमें आखिरी.
नहीं मैं वो क्योंकि मुझ पे है ही इल्जाम, मैं दुख वाली पॉइंट पता नहीं खत्म करना चाहता, बट आई थिंक यू आर राइट. लेकिन द गुड थिंग इज कि देखिए आपका जो फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट था वो इट वाज स्पेक्टेकुलरली यूथ फोकस्ड. वो सिटी फोकस था लेकिन यूथ फोकस भी था. इट वुड वेरी क्लियरली डिफाइंड कि यार ये जो मोटर तुम्हें मिलेगी ना, ये तुम्हें यूथ डिविडेंड से ही मिलेगी. एंड जो सिटी वाला भी बात है, सो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि लकीली ये यू नो वी बिल्ड ऑन यू अदर थिंग्स सो ऑन सो फोर्थ. मेरे ख्याल में ये मसला जो है इज नाउ बिकमिंग बिगर एंड बिगर कि हम वी कैन नॉट अफोर्ड नॉट टू टॉक अबाउट. वी कैन नॉट गिव अप जस्ट बिकॉज उस पे
नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं ये तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता गिव अप करें आप और मैं जब तक जान है वी वोंट गिव अप और कोई भी नहीं गिव अप करेगा अगली जनरेशन भी नहीं गिव अप करेगी
वी कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड एट सम पॉइंट जो है वो कैच ऑन हो जाए होपफुली कैच ऑन इन टाइम दूसरा जो पॉइंट है मेरे ख्याल में जो अर्बन सिटी वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हमारे नंबर्स देखें दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल सो यंग पाकिस्तान इज मोर अर्बन देन ओल्ड पाकिस्तान
बाय डेफिनेशन या
सो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो अर्बन हो रहा है 50% तकरीबन लेकिन हमारे नंबर ये कहते हैं कि जो नौजवान है वो तकरीबन 65% जो है सिटी डवेलर्स लेकिन जो इसमें एक अहम बात है वो ये कि हमने इन आर प्लानिंग सिटी का मतलब भी जो है ना वो ले लिया है कराची लाहौर इस्लामाबाद शायद सियालकोट फैसलाबाद जो अर्बन पाकिस्तान है इज मच बिगर देन दैट और इन सम वेज वी हैव टू स्टार्ट ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेकेंडरी सिटी टू मेक देम नॉट जस्ट वायबल बट डिजायरेबल प्लेसेस
देखिए जी राइट नाउ देर आर 50 सिटीज इन पंजाब दैट आर ओवर 100,000 आप 100,000 अमेरिका में देखें 100,000 की सिटी बहुत बड़ी समझी जाती है बहुत बड़ी समझी जाती है ठीक है हमारे पास इन पंजाब अलोन वी गॉट सिटीज अबव 100,000 50 ऑफ देम ठीक है पूरे मुल्क में तो मेरा ख्याल वी गॉट अबाउट 80-100 सिटीज अबव 100,000 और जो अर्बन फिगर्स हैं वो इस वक्त 70% ऑफ पाकिस्तान इज अर्बन अगर रियली देखा जाए यह सेंसस वगैरह में हम गड़बड़ करते हैं खैर डेफिनेशनल बात है बट वी कैन टॉक अब अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है पर आदिल साहब आखिरी में ये भी कह दूं कि जो आपने जो तीसरी ई की बात की थी एम्प्लॉयमेंट तीनों ईज आपकी अर्बन फिनोमिनन है विदाउट अर्बेनिटी तीनों ईज नहीं होती एम्प्लॉयमेंट इज एन अर्बन फिनोमिनन एम्प्लॉयमेंट देहात में जनरेट ही नहीं होती और अगर ये शहर को आज़ाद नहीं करेंगे अगर रियलिस्टिक एक्टिविटी को आज़ाद नहीं करेंगे अगर शहर को प्रॉपरली बनने नहीं देंगे तो नौकरी नहीं आएंगी फॉर एग्जांपल अगर औरतों की बात करें औरतों की नौकरियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं दुकानों में होटल्स में सर्विस इंडस्ट्री में वो अगर सर्विस इंडस्ट्री को ये होटल्स बन नहीं देते शॉपिंग मॉल बन नहीं देते अब एक दो शॉपिंग मॉल यहाँ बने आप देखें कितनी औरतों की एम्प्लॉयमेंट हुई है अगर हमारे ब्यूरोक्रेट बनने देते तो आज तक क्या कुछ हो गया होता अभी आज भी अगर ये हाथ उठा ले और कहें हाँ भाई तुम बना सकते हो चीज़ें तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी तरक्की होगी बहुत जल्दी नौकरियाँ निकलेंगी इतनी नौकरियाँ निकलेंगी मैंने हिसाब लगाया आदिल साहब आखिर मैं आपको बता दूँ लाहौर में लोग ढूंढते फिरते हैं तेल और सोना कि जी हमें तेल सोना मिल जाए हम तरक्की कर जाए हम ये हो जाए वो हो जाए मैंने अब एक नया हिसाब लगाया मैं पेपर लिख रहा हूँ आजकल कि जी असल सोना जो है वो शहर में होता है और लाहौर में आपका क्या ख्याल है कितनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी इस वक्त मैंने हिसाब लगाया अगर हम लाहौर को अगर मेरे तरीके से बनाने दें सिर्फ रूल्स बदलें और कुछ नहीं नॉर्थ के वो जो है ना इंस्टीट्यूशन सिर्फ रूल्स बदलें और हमने कुछ नहीं करना तो आपका ख्याल है कितनी इन्वेस्टमेंट होगी लाहौर में और कितनी नौकरियां निकलेंगी लाहौर लोन में मेरा एस्टिमेट है $1.3 trillion की इन्वेस्टमेंट हो सकती है $1.3 trillion नॉट रुपीज
लेकिन आपके लिसनर के लिए कि अर्बन मस्ट नॉट बिकम द ऑपोजिट ऑफ रूरल इन ए पॉलिसी सेंस कि अर्बन पे ज्यादा अहमियत देने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि रूरल पे मत दो आप द पॉइंट इज के जो हमने एक तरह से अर्बन को उसके अपने पे छोड़ा हुआ है कि वो खुद ही हो जाएगा That attitude needs to change.
देखिए जी, लेकिन बिल्कुल सही बात है आपको जब मैं ये कहता हूँ डज मीन कि किसी को निगलेक्ट किया जाए पॉलिसी इज एन आर्ट वे यू हैव टू रिटेन बैलेंस तो बैलेंस तो जरूर होना पड़ेगा बट इस वक्त तो हमने ये किया हुआ है हमने बांध के रखा हुआ है शहरों को कि जी हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जनरलों की तबीयत से शहर चलेगा मार्केट नहीं चलाएगी शहर को आप एक बात सोचिए इस वक्त लाहौर शहर या कराची शहर या पिंड किसी भी पाकिस्तान के शहर में आपको एक अच्छा दफ्तर भी नहीं मिलेगा आप दफ्तर भी जाके लेंगे तो किसी घर में लेंगे या गंदी सी बिल्डिंगों में लेंगे ठीक है ना क्योंकि आपने बनने ही कुछ नहीं देना अगर बनने ही कुछ नहीं देना तो फिर ये सब बातें नहीं होंगी ना ये मसला है एनी वे चलिए जी आदिल साहब थैंक यू वेरी मच एनी लास्ट थॉट्स बिकॉज ये बहुत लंबा हो गया आई डिडंट रियलाइज इतना लंबा हो गया इतनी मजेदार बातें आपसे हुई हैं
थैंक यू वेरी मच
ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू जी
हां इट इज ऑलवेज अ प्लेजर लेकिन आखिरी थॉट मेरे ख्याल में वही है जो हमने सबसे बड़ी चीज सीखी है कि वी नीड टू लिसन टू आवर यंग
बिल्कुल सही एक्सीलेंट पॉइंट आदिल साहब ऑलवेज अ प्लेजर यू आर माशाल्लाह डिलाइटफुल टू टॉक टू एंड कीप अप योर ऑप्टिमिज्म honestly, listening to you, even I get uplifted. It's absolutely wonderful to hear your optimism. Thank you.
सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।